इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय एक। आदम से अब्राहम तक की वंशावली। नोआ के पुत्र आदम, शेत, एनोश, केनान, महलालेल, यारेद, हनोक, मेथुसेला, लामेक, नोआ। नोआ के पुत्र शेम, हाम और याफेत। याफेत का वंश। याफेत के पुत्र गोमर, मागोग, मेदिया, यावन, तूबल, मेशेक तथा तीरास थे। गोमर के पुत्र अशकेनाज, रिफात तथा तोगरमा थे। यावन के पुत्र एलिशा, तर्शीश, कित्तीम तथा दोदानीम थे। हाम का वंश। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, ऊट तथा कनान हुए। कूश के पुत्र सेबा, हावीला, सबधा, रामा और सबतेका। रामा के पुत्र शीबा और देदान। कूश उस निम्रोद का पिता था जो पृथ्वी पर पहले वीर व्यक्ति के रूप में मशहूर हुआ। मिस्र के पुत्र लूदीम, अनामीम, लेहाबीम, नाफतूही, पथरूस, कसलू और काफ्तोर, जिनसे फिलिस्तीनी राष्ट्र निकले। कनान का पहला पुत्र सीदोन, फिर हित्ती, यबूसी, अमोरी, गिरगाशी, हिवी, आर्की, सीनी, अरवादी, जेमारी और हामाथी। शेम का वंश। शेम के पुत्र एलाम, अशहूर, अरफाक्साद, लूद तथा आराम थे। आराम के पुत्र उज, हुल, गेथेर तथा मेशेक थे। अरफाक्साद शेला का पिता था। शेला एबर का। एबर के दो पुत्र हुए। एक का नाम पेलेग, क्योंकि उनके समय में पृथ्वी का बंटवारा हुआ। उनके भाई का नाम योक्तान था। योक्तान के पुत्र अल्मोदाद, शेलेफ, आसार में बेत, जेरा, हादरोम, उजाल, दिखला, ओबाल, अबिमाइल, शीबा, ओफिर, हावीला और योबाब। ये सभी योक्तान के पुत्र थे। शेम, अरफाक्साद, शेला, एबर, पेलेक, रेव, सेरूग, नाहोर, तेरा, अब्राम अर्थात अब्राहम। अब्राहम वंशज। अब्राहम के पुत्र थे यित्साहक और इश्माइल। हागार द्वारा अब्राहम के वंशज। उनकी वंशावली इस प्रकार है। इश्माइल का पहलौठा था नेबाइयोत और दूसरे पुत्र थे केदार, अदबील, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मासा, अदद, तेमा, येतूर, नाफीश और केधेमा। ये इश्माइली के पुत्र थे। केथूरा द्वारा अब्राहम के वंशज। केथूरा जो अब्राहम की रखेल थी उसके पुत्र थे जिमरान, योक्षान, मेदान, मिदियान, इश्बक और शुआ। योक्षान के पुत्र थे शीबा और देदान। मिदियान के पुत्र एफा, एफर, अनोक, अविदा तथा एल्धा थे। ये सब केथूरा से पैदा हुए थे। सारा द्वारा अब्राहम के वंशज। अब्राहम यित्साहक के पिता थे। यित्साहक के पुत्र थे एसाव और इज़राइल। एसाव के पुत्र। एसाव के पुत्र थे एलिफाज, रियूएल, योश, यालम और कोरा। एलिफाज के पुत्र थे तेमान, ओमर, जेफो, गाताम, केनाज, तिमना और अमालेक। रियूएल के पुत्र थे नाहात, जेरा, शम्मा और मिज्झा। एदोम में सेर के लोग। सेर के पुत्र थे लोतन, शोबल, जिबेओन, अन्हा, दीशोन, एजर और दीशान। लोतन के पुत्र होरी और होमाम। लोतन की बहन का नाम तिमना था। शोबल के पुत्र थे अलवान, मानाहात, एबल, शेफो और ओनम। जिबेओन के पुत्र अय्या और अन्हा। अन्हा का पुत्र था दीशोन। दीशोन के पुत्र हेमदान, एशबान, इथरान और चेरन। एजर के पुत्र बिल्हान, तुसावन और आकन। तुसावन और आकन दीशान के पुत्र उज और अरान। एदोम देश के नायक। इसके पहले कि इज़राइल पर किसी राजा का शासन होता, एदोम देश पर राज्य करने वाले राजा ये थे। बेओर का पुत्र बेला, उसके द्वारा शासित नगर का नाम था दिनहाबा। बेला के मरने के बाद उसके स्थान पर बोजराहवासी जेरा का पुत्र योबाब राजा बना। योबाब के मरने के बाद उसके स्थान पर तेमानियों के देश का व्यक्ति हुशम राजा बना। हुशम के मरने के बाद उसके स्थान पर बेदद का पुत्र हदद राजा बना। उसने मोआब देश में मिद्यानी सेना को हरा दिया। उसके द्वारा शासित नगर का नाम था आवित। हदद के मरने के बाद उसके स्थान पर मसरेका का सामला राजा बना। सामला के मरने के बाद फरात नदी पर बसे रेहोबोत का निवासी शाउल उनके स्थान पर राजा बना। शाउल के मरने के बाद उसके स्थान पर अखबोर का पुत्र बाल हनन राजा बना। बाल हनन के मरने के बाद उसके स्थान पर हदद राजा बना। उस नगर का नाम पाऊ था तथा उसकी पत्नी का नाम मेहताबेल था। वह मातरेद की पुत्री थी और मातरेद मेद साहब की पुत्री थी। तब हदद की भी मृत्यु हो गई। एदोम देश के नायकों के नाम ये हैं: नायक तिमना, अलवा, यथेत, ओहोलिबामा, एल्हा, पीनोन, केनाज, तेमान, मिब्जार, मगदियल, ईराम। ये सभी एदोम देश के प्रधान हुए। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 2। इज़राइल के पुत्र। इज़राइल के पुत्रों के नाम ये हैं: रियूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाखार, जेबुलून, दान, योसेफ, बिन्यामीन, नफ्ताली, गाद और आशेर। यहूदा गोत्र। हेज़रोन के पुत्र तक। यहूदा के पुत्र एर, ओनान और शेला, ये तीनों कनानी शुआ की पुत्री से पैदा हुए थे। एर यहूदा का पहलौठा यहावे की दृष्टि में दुष्ट था, इसलिए यहावे ने उसके प्राण ले लिए। यहूदा की पुत्र वधु तामार से उन्हें पेरेस और जेरा पैदा हुए। यहूदा गोत्र 5 पुत्र थे। पेरेस के पुत्र हेज़रोन और हामूल। जेरा के पुत्र जिमरी, एथन, एमान, कालकोल और दारा। कुल 5 पुत्र। कार्मी के पुत्र आखान, अर्थात इज़राइल की विपदा, जिसने भेंट किए हुए सामान को लेकर आज्ञा तोड़ी थी। एथन का पुत्र अजरिया। हेज़रोन के पुत्र जो उसे पैदा हुए येरहमील, राम और केलब। हेज़रोन के पुत्र राम से लेकर। राम पिता था अमीनादाब का और अमीनादाब नहशोन का, जो यहूदा के पुत्रों का नायक हुआ। नहशोन पिता था सालमा का, सालमा बोअज का, बोअज ओबेद का, ओबेद येशे का। येसी का पहलौठा था एलियाब, दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमिया, चौथा नेथानेल, पांचवा रद्दई, छठवा ओजेम और सातवा दावीद। उनकी बहनें थी जेरुया और अबीगैल। जेरुया के 3 पुत्र थे: अबिशाई, योआब और आसाहेल। अबीगैल ने अमासा को जन्म दिया, जिसका पिता था इश्माइली मूल का येथिर। हेज़रोन के पुत्र कालेब। हेज़रोन के पुत्र कालेब को उसकी पत्नी अत्सुबा और येरियोत से ये पुत्र पैदा हुए: येशर, शोबाब और अर्दोन। जब अत्सुबा की मृत्यु हुई, कालेब ने एफ्राता से विवाह कर लिया, जिसने हूर को जन्म दिया। हूर उरी का पिता हुआ और उरी बसलेल का। इसके बाद में हेज़रोन ने माखीर की पुत्री से संबंध बनाया। माखीर गिलाद का पिता था। उसने 60 वर्ष की उम्र में उससे विवाह किया और उससे सेगूब का जन्म हुआ। सेगूब याइर का पिता हुआ, जो गिलाद में 23 नगरों का स्वामी था, किंतु गेशूर और आराम ने अव्वोथ याइर केनाथ और इन क्षेत्रों के 60 गांव इनसे छीन लिए। ये सभी गिलाद के पिता माखीर के वंश के थे। कालेब एफ्राथा में हेज़रोन की मृत्यु के बाद हेस्रोन की पत्नी अबिया ने अशहूर को जन्म दिया, जो तकोआ का पिता था। हेज़रोन के पुत्र येरहमील हेज़रोन के पहलौठे येरहमील के पुत्र थे। पहलौठा राम, इसके बाद बूना, ओरेन, ओजेम और अहिया। येरहमील की एक अन्य पत्नी भी थी जिसका नाम था अटारा, जो ओनम की माता थी। येरहमील के पहलौठे राम के पुत्र माज, यामीन और एकर। ओनम के पुत्र शम्माई और यादा। शम्माई के पुत्र नादाब और अबीशूर। अबीशूर की पत्नी का नाम था अबिहाइल, जिससे अहबान और मोलीद का जन्म हुआ। नादाब के पुत्र सेलेद और अपाइम। सेलेद निसंतान ही मर गया। अपाइम का पुत्र इशी था। इशी का शोशान, शोशान का अहलाई। शम्माई के भाई यादा के पुत्र येथेर और योनातन थे। येथेर निसंतान ही चल बसा। योनातन के पुत्र थे पेलेत और जाजा। ये थे येरहमील के वंशज। शोशान के कोई पुत्र ना हुआ, उसके सिर्फ पुत्रियां ही पैदा हुई। शोशान का यारा नामक एक मिस्री दास था। शोशान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने इसी दास से कर दिया, जिससे अत्तई का जन्म हुआ। अत्तई नाथान का पिता था। नाथान जाबाद का, जाबाद एफलाल का, एफलाल ओबेद का पिता था। ओबेद येहू का, और येहू अजरिया का। अजरिया हेलेस का, और हेलेस एलासा का। एलासा सिसमाई का, और सिसमाई शल्लूम का। शल्लूम ये का मिया खा, और ये का मिया एलिशामा का। कालेब के वंश। हेज़रोन के पुत्र येरहमील। येरहमील के भाई कालेब के पुत्र, उसका पहलौठा मेशा, जो जीफ का पिता था, और दूसरा माशेरा हेब्रोन का। हेब्रोन के पुत्र कोरा, तपुहा, रेकेम और शेमा। रेहाम का पिता था शेमा, जो योरकियम का पिता था, और रेकेम शम्माई का पिता था। शम्माई का पुत्र था माओन। माओन बेथ तसूर का पिता था। कालेब की उपपत्नी एफा ने हारान, मोत्सा और गजजा को जन्म दिया, और हारान गजजा का पिता हुआ। यहादाई के पुत्र रेगेम, योथाम, गेशन, पेलेत, एफा और शाफ। कालेब की उपपत्नी माखा ने शेबर और तिरहाना को जन्म दिया। उसने शाफ को भी जन्म दिया, जो मदमन्ना का पिता था, और शेवा को भी, जो मकबेना और गिबिया का पिता था। कालेब की पुत्री का नाम अक्सा था। ये सभी कालेब के वंश के थे। एफ्राता के पहलौठे हूर के पुत्र किरियत यारीम का पिता शोबल। बेथलेम का पिता सालमा और बेथ गादर का पिता हारेफ। किरियत यारीम के पिता शोबल के अन्य पुत्र भी थे, आरोहा, मेनुहोथ नगरवासी का आधा भाग, और किरियत यारीम नगर के परिवार, इथरी, उथी, शुमारथा और मिश्राई। इन्हीं से सोराही और एश्ताउली वंश के लोग पैदा हुए। सालमा के पुत्र बेथलेहम, नेथोफाथी, अथारोथ बेथ योआब और आधे सोरी माना हाथी। याबेज नगरवासी शास्त्रियों के वंशज तिराही, शिमियाथी और सुखाथी। ये केनी जाति के वे लोग हैं जो हम्मात से आए थे, जो रेखाब वंश का मूल था। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 3। दाविद वंशज। निम्नलिखित दाविद के वे पुत्र हैं जिनका जन्म हेब्रोन में हुआ था। पहलौठा अम्मोन, जो येज़रील वासी अहिनोअम से पैदा हुआ था। दूसरा दानियेल, जिसका जन्म कर्मेल अबीगैल से। तीसरा अबशालोम, जिसका जन्म माखा से हुआ, जो गेशूर के राजा तालमाई की पुत्री थी। चौथा पुत्र था अधोनिया, जिसकी माता थी हेगीत। पांचवा पुत्र था शेपाथिया, जिसकी माता थी अबिताल। छठा इथ्रियाम, जिसका जन्म दाविद की पत्नी एग्ला से हुआ। हेब्रोन में दाविद के जहां उन्होंने 7.5 साल शासन किया था, 6 पुत्र पैदा हुए। यरूशलेम में उन्होंने 33 साल शासन किया। यरूशलेम में अमीएल की पुत्री बातशुआ से उनकी ये 4 संतान पैदा हुई, शिमिया, शोबाब, नाथान और शलोमोन। इसके बाद इबहार, एलीशामा, एलीफेलेत, नोघा, नेफेक, याफिया, एलीशामा, एलियादा और एलीफेलेत कुल 9 पुत्र। ये सभी दाविद के पुत्र थे, उन पुत्रों के अलावा जो उनकी उपपत्नियों से पैदा हुए थे। इनकी तामार नाम की एक बहन थी। यहूदिया के राजा। हेब्रोन में दाविद के शलोमोन का पुत्र रीहोबोयाम, उसका पुत्र अबिया, उसका पुत्र आसा और उसका पुत्र यहोशाफात था। उसका पुत्र यहोराम, उसका पुत्र अहज्या, उसका पुत्र योआश, उसका पुत्र अमाज्या, उसका पुत्र अजरिया, उसका पुत्र योथाम, उसका पुत्र आहाज, उसका पुत्र हिजकिया, उसका पुत्र मनशशे, उसका पुत्र अमोन, उसका पुत्र योशिया, योशिया के पुत्र पहलोठा योहानन, दूसरा यहोयाकीम, तीसरा सिदकियाहू व चौथा शल्लूम। यहोयाकीम के पुत्र थे यकोनिया या यहोयाकीन, उसका पुत्र सिदकियाहू। यहोयाकीन के वंशज। बंदी यकोनिया के पुत्र शियल्तियेल और मालखीराम, पेदाइया, शेनातसार, येकामिया, ओशामा और नेदाभिया। पेदाहिया के पुत्र जेरुबाबेल और शिमेई, जेरुबाबेल के पुत्र मेशुल्लाम और हन्निया, उनकी बहन का नाम शलोमीत था। इनके अलावा हशुभा, ओहेल, बेरेखिया, असादिया और युशबहेसेद, जो 5 पुत्र थे। हनन्या के पुत्र पेलाथिया और योशाइया, उसका पुत्र रेफाइया, उसका पुत्र आर्नन, उसका पुत्र ओबदिया, उसका पुत्र शेकानिया, शेकानिया का पुत्र शेमाया, शेमाया के पुत्र थे हत्तूश, येगाल, बारिया, नेआरिया और शाफात, कुल 6 भाई। नेआरिया के पुत्र एलोइनाई, हिजकिया और अजरिकाम, ये 3 थे। एलियोइनाई के पुत्र ओदविया, एलियाशिब, पेलाइया, अक्कूब, योहानन, देलाइया और अनानी, जो 7 भाई थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 4। यहूदा गोत्रज। यहूदा के पुत्र पेरेज, हेजरोन, कार्मी, हूर और शोबल। शोबल का पुत्र रेहाइया, याहात का पिता था। याहात अहुमाई और लाहाद का। ये सोराहियों के मूल पुरुष थे। एथाम के पुत्र ये थे, येजरील, इश्मा और इतबाश। इनकी बहन का नाम था हासलेल पोनी। पेनुएल गेदोर का पिता हुआ और एजेर हुशा का। बेथलेम के पिता एफराथा के पहलोठे हूर के पुत्र ये थे, अशहूर। तकोवा के पिता की 2 पत्नियां थी, हेला और नारा। नारा ने उसके लिए अहुजाम, हेफेर, तेमनी और हाशतारी को जन्म दिया। ये सभी नारा के पुत्र थे। हेला के पुत्र जेरेत, जोहार, एथनन और कोज पिता था अनूप तथा जोबेबा का। और अहरियल के वंश का पिता था हारूम। याबेज अपने भाइयों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रतिष्ठित था। उसकी माता ने उसे याबेज नाम यह कहकर दिया था, क्योंकि मैंने उसे दर्द के साथ जन्म दिया है। याबेज ने इज़राइल के परमेश्वर की यह दोहाई दी, आप मुझे आशीष दे और मेरी सीमाओं को बढ़ाए। इसके अलावा आप मेरे साथ रहते हुए सारी बुराइयों को मुझसे दूर रखे कि मैं उससे बचा रह सकूं। परमेश्वर ने उसकी विनती सुन ली। शुहा का भाई केलूब मेहीर का पिता था, जो एश्तोन का पिता था। एश्तोन पिता था बेथराफा और पासे का। तेहेनिया इर नहाश का पिता था, ये रेखावासी थे। केनज के पुत्र थे ओथनियल और सेराइया। ओथनियल के पुत्र थे हाथत और मेयोनोथाई। मेयोनोथाई पिता हुआ ओफरा का और सेराइया पिता हुआ योआब का, जो गेहाराशीम का पिता था। ये गेहाराशीम इसलिए कहलाए कि कारीगर थे। ये फुन्ने के पुत्र कालेब के पुत्र ईरू, एला और नाअम। एला का पुत्र था केनज, यहालेलेल के पुत्र जीफ, जीफा, तिरिया और आसारेल। एज्रा के पुत्र येथेर, मेरेद, एफर और यालोन। मेरेद की एक पत्नी बिथिया ने गर्भ धारण किया और उसने मिरियम, शम्माई और इश्बा को जन्म दिया, जो एशतमोह का पिता था। परो की पुत्री बिथिया से जन्मे मेरेद की संतान ये थे। उसकी यहूदियावासी पत्नी ने यारेद को जन्म दिया, जो गेदोर का पिता था, हेबेर को भी जो सोखो का पिता था, और येकुथियेल को जो जानोहा का पिता था। नाहाम की बहन होदिया की पत्नी के पुत्र गार्मी के काइला और माकाहाती एशतमोह के वंशमूल थे। शिमोन के पुत्र अमोन, रिन्हा, बेन हानन और तीलोन। इशी के पुत्र जोहेत और बेन जोहेत। यहूदा के पुत्र शेला के पुत्र एर, जो लेखा का पिता था। लाधा, जो मारेशा का पिता था, जो बेत अशबेया नगर वंशमूल था, जहां सन के कपड़े का काम होता था। इनके अलावा योकीम और कोजेबा नगरवासी, और योआश व सारफ, जो मोआब पर शासन करते रहे, फिर याशूबी हेलेम को लौट गए। यहां ये वर्णन पुराने हैं। ये सभी कुम्हार थे जो नेताइम और गेधेरा में बस गए थे। वहां रहते हुए वे राजा की सेवा में लगे रहे। सिमियन वंशज। शिमोन के पुत्र नमुएल, यामीन, यारीब, जेरा, शाउल। उसका पुत्र शल्लूम। उसका पुत्र मिबसाम। उसका पुत्र मिश्मा। मिश्मा के पुत्र हमुएल। उसका पुत्र जक्कूर। उसका पुत्र शिमेई। शिमेई के 16 पुत्र थे और 6 पुत्रियां, मगर उसके भाइयों के अधिक संतान ना हुई, ना ही उसका वंश बढ़ा, जैसी यहूदिया निवासियों की हुई थी। वे बेशरबा, मौलाधा, हाजर शुअल, बिल्हा, एजेम, तोलाद, बेथुएल, ओरमा, जिकलाग, बेथ मरकाबोत, हाजर सुसीम, बेथ बिरी और शर्रीम नगरों में निवास करते थे। जब तक दाविद का शासन रहा, ये इन्हीं के नगर रहे। उनके आसपास के गांवों के नाम थे एथाम, एइन, रिमोन, तोकेन और आशान, 5 गांव। ये गांव उन नगरों के आसपास ही थे। इनका विस्तार बाल नामक नगर तक था। ये इन्हीं के द्वारा बसाए गए नगर थे। ये अपनी वंशावली का लेखा भी रखते थे। मेशोबाब, यामलेक, योशा, जो अमाज्या का पुत्र था, योएल, येहू, जो योशीबिया का पुत्र था, जो सेराया का पुत्र था, जो आसियल का पुत्र था, एलियोइनाई, याकोबा, ये यहूशाइया, आसाइया, आदियल, येसिमियल, बेनहिया, जीजा, शिफी का पुत्र, जो अल्लोन का पुत्र था, जो येधाया का पुत्र था, जो शिमरी का पुत्र था, जो शेमाया का पुत्र था। ये सभी अपने अपने गोत्रों के प्रधान थे। इनके पिता का वंश बहुत ही बढ़ता चला गया। उन्होंने घाटी की पूर्वी दिशा की ओर, गेदोर के फाटक की ओर बढ़ना शुरू किया कि उन्हें अपने भेड़ बकरियों के लिए चरागाह मिल जाए। यहां उन्हें उत्तम और उपजाऊ चरागाह मिल गया। भूभाग भी बहुत ही फैला हुआ था। यहां शांति थी, चैन था, क्योंकि इसके पहले यहां के निवासी हाम के वंश थे। ये जिनके नाम यहां लिखे हैं, यहूदिया के राजा हिजकिया के शासनकाल में आए। उन्होंने वहां के मियूनियों को और उनके शिविरों को नष्ट कर दिया। वे उनके स्थान पर वहां रहने लगे, क्योंकि यहां उनके पशुओं के लिए चरागाह था। शिमोन के पुत्रों में से 500 पुरुष वहां से सेईर पर्वत को गए। इशी के पुत्र पेलातिया, नेआरिया, रेफाइया और उज्जियल उनके प्रधान थे। उन्होंने अमालेकियों के भाग को, जो जीवित बचकर यहां आए हुए थे, नष्ट कर दिया, जो अब तक वहां रहते आ रहे थे। इतिहास की पहली पुस्तक, अध्याय 5। राउबेन के वंशज। अब इज़राइल के पहलौठे रियूबेन वंशज, किंतु इसलिए कि उसने अपने पिता के बिस्तर को अशुद्ध किया था, उसके पहलौठे का जन्मसिद्ध अधिकार इज़राइल के पुत्र योसेफ के पुत्रों को दे दिया गया, फलस्वरूप वंशावली में उसका लेख पहलौठे के रूप में नहीं किया जा सका। यद्यपि यहूदा अपने भाइयों में मजबूत जरूर हुआ और उसके वंश से एक प्रधान का आगमन भी हुआ, फिर भी पहलौठे का जन्मसिद्ध अधिकार योसेफ को ही मिला। इज़राइल के पहलौठे रियूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेज़रोन और कार्मी, योएल के पुत्र, उसका पुत्र शेमाया, उसका पुत्र गोग, उसका पुत्र शीमेई, उसका पुत्र मीखा, उसका पुत्र रेहाइया, उसका पुत्र बाल, उसका पुत्र बियेरा, जिसे अशूर के राजा तिगलत पलेसर बंदी बनाकर ले गया। बियेरा रियूबेन वंशजों का प्रधान था। वंशावली के अनुसार वंश के आधार पर उसके भाई, उनका नायक येइल और जकरिया, अत्साथ्स का पुत्र बेला, उसका पुत्र शेमा, उसका पुत्र योएल, जिसका घर अरोवर नगर में नेबो और बाल मेयोन तक था, उसका घर पूर्व में फरात नदी के इसी ओर मरुस्थल की सीमा तक भी था, क्योंकि गिलाद में उनके पशुओं की संख्या बढ़ती गई। शाऊल के शासनकाल में रियूबेन वंशजों ने हगरियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया, वे उनके अधीन हो गए। इसके बाद वे हगरियों के शिविरों में ही रहते रहे और गिलाद के पहले के सारे क्षेत्र में बस गए। गाद वंशज उन्हीं के सामने बाशान क्षेत्र में रहते थे, वे सलेका तक फैले हुए थे। योएल प्रधान था, दूसरा था शाफाम, उसके बाद बाशान में यानाई और शाफात, उनके गोत्रों के आधार पर उनके संबंधी थे मिखाएल, मेशुल्लाम, शीबा, योराई, याकान, जिया और एबर, सात व्यक्ति। हूरी के पुत्र अबिहाइल वंशज, हूरी यारो का, जो गिलाद का, जो मिखाइल का, जो येशिशाई का, जो याहादो का, जो बूज का पुत्र था, अही अब्दियेल का, वह गोनी का, जो उनके गोत्र का प्रधान था। ये सभी बाशान के नगर गिलाद और इसके अन्य नगरों में और शारोन के सारे चरागाह में दूर दूर तक रहते थे। इन सभी की वंशावली का लेखा यहूदिया के राजा योथाम और इज़राइल के राजा यरोबोआम के शासनकाल में रखा गया था। रियूबेन वंशजों में, गाद वंशजों में और मनशशे के आधे गोत्र में वीर योद्धा थे। ये ढाल और तलवार लेकर चलते थे और वे धनुष भी चलाते थे, वे युद्ध कला में कुशल थे। युद्ध के लिए तैयार इनकी संख्या 44,760 थी। उन्होंने हगनी, येतूर, नाफीश और नोदाबी जातियों पर हमला किया। उन्हें उनके विरुद्ध सहायता मिली और हगरी और उनके साथी इनके अधीन कर दिए गए, क्योंकि युद्ध करते हुए उन्होंने परमेश्वर की दोहाई दी और परमेश्वर ने उनकी विनती सुनकर उनका यह जरूरी आग्रह सुन लिया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर में विश्वास किया था। इन्होंने उनके पशुओं को अपने अधिकार में कर लिया, 50,000 ऊंट, 250,000 भेड़े, 2,000 गधे और 1,00,000 पुरुष जीवित बंदी बनाए गए। अनेक घात किए गए, क्योंकि युद्ध परमेश्वर का था। वे लोग बंदी बनाए जाने तक इस क्षेत्र में रहते रहे। मनशशे का अर्धकुल। मनशशे के अर्धकुल के सदस्य इस देश में रहते रहे, जो अनगिनत थे, और बाशान से लेकर बाल हरमोन तक और सेनीर और हरमोन पर्वत तक बसे हुए थे। उनके गोत्र पिताओं के वंशजों के नायकों के नाम निम्नलिखित हैं: एफर, ईशी, एलियल, अजरियल, येरेमिया, होदविया और यहादियल। ये वीर योद्धा मशहूर व्यक्ति और अपने पिता के गोत्रों के प्रधान थे, किंतु उन्होंने अपने पूर्वजों के परमेश्वर से विश्वासघात किया और देश के पराये देवताओं को अपना लिया, जिन्हें परमेश्वर ने उनके सामने से खत्म किया था। तब इज़राइल के परमेश्वर ने अशूर के राजा पूल, अर्थात अशूर के राजा तिगलत पलेसेर का हृदय उभारा और वह उन्हें बंधुआई में ले गया, अर्थात रियूबेन वंशजों, गाद वंशजों और मनशशे वंशजों के आधे गोत्र को। इन्हें वह हाला, आबोर, हारा और गोजान नदी के पास ले आया। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 6। लेवी वंशज। लेवी के पुत्र गेरशोन, कोहात और मेरारी। कोहात के पुत्र अमराम, इजहार, हेब्रोन और उज्जियल। अमराम की संतान अहरोन, मोशे और मिरियम। अहरोन के पुत्र नादाब, अबीहू, एलियाजर और इथामार। एलियाजर पिता था फिनिहास का, फिनिहास अबीशुआ का, अबीशुआ बुक्की का, बुक्की उज्जी का, उज्जी जेराइया का, जेराइया मेराइयोत का, मेराइयोत अमरिया का, अमरिया अहितूब का, अहितूब सादोक का, सादोक अहिमाज का, अहिमाज अजरिया का, अजरिया योहानन का, योहानन अजरिया का पिता था। यह वही अजरिया था जिसने यरूशलेम में शलोमोन द्वारा बनाए गए भवन में पौरोहितिक सेवा की थी। अजरिया अमरिया का, अमरिया अहितूब का, अहितूब सादोक का, सादोक शल्लूम का, शल्लूम हिल्किया का, हिल्किया अजरिया का, अजरिया सेराइया का, सेराइया यहोत सादाक का। जब यहावे ने नबूकदनेज़र द्वारा यहूदिया और यरूशलेम को बंधुआई में भेजा, तब यहोत सादाक भी बंधुआई में ले जाया गया। लेवी के पुत्र गेरशोम, कोहात और मेरारी। गेरशोम के पुत्रों के ये नाम हैं: लिबनी और शीमेई, कोहात के पुत्र। अमराम, इजहार, हेब्रोन और उज्जियल, मेरारी के पुत्र। महाली और मूशी। पिताओं के आधार पर लेवी वंशजों के कुल इस प्रकार हैं: गेरशोम के कुल, उसका पुत्र लिबनी, उसका पुत्र याहात, उसका पुत्र जिम्हा, उसका पुत्र योहा, उसका पुत्र इद्धो, उसका पुत्र जेरा, उसका पुत्र येआथेराई, कोहात के पुत्र, उसका पुत्र अमीनादाब, उसका पुत्र कोरहा, उसका पुत्र असीर, उसका पुत्र एलकाना, उसका पुत्र एबियासाफ, उसका पुत्र असीर, उसका पुत्र ताहात, उसका पुत्र उरियल, उज्जिया उसका पुत्र, शाउल उसका पुत्र। एलकाना के पुत्र ये थे: आमासाई, अहिमोत, उसका पुत्र एखाना। एलकाना के पुत्र थे जोफाई, उसका पुत्र नाहात, उसका पुत्र एलियाब, उसका पुत्र येरोहाम, उसका पुत्र एलकाना। शैमुएल के पुत्र, उनका पहलौठा पुत्र योएल, दूसरा अबिया। मेरारी के पुत्र महाली, उसका पुत्र लिबनी, उसका पुत्र शीमेई, उसका पुत्र उज्जा, उसका पुत्र शिमिया, उसका पुत्र हाग्या और उसका पुत्र असाइया। यहावे के भवन के संगीतकार। निम्नलिखित पुरुष वे हैं जिन्हें दाविद ने यहावे के भवन में संदूक की स्थापना के बाद आराधना में गाने की जवाबदारी सौंप रखी थी। ये यरूशलेम में शलोमोन द्वारा यहावे का भवन बनाए जाने तक मिलन वाले तंबू के सामने आराधना संगीत के द्वारा सेवा करते थे। वे अपने पद के अनुसार ही यह सेवा किया करते थे। सेवा के लिए चुने गए उन व्यक्तियों और उनके पुत्रों के नाम इस प्रकार हैं: कोहात के पुत्रों में से गायक हेमान, जो योएल का पुत्र शैमुएल का पुत्र था, जो एलकाना का, जो येरोहाम का, जो एलियल का, जो तोहा का, जो सूफ का, जो एलकाना का, जो माहात का, जो आमासाई का, जो एलकाना का, जो योएल का, जो अजरिया का, जो जेफनिया का, जो ताहात का, जो असीर का, एबियासफ का, जो कोरा का, जो इजहार का, जो कोहात का, जो लेवी का, जो इज़राइल का पुत्र था। हेमान का सहकर्मी आसफ उसके दाएं पक्ष में खड़ा रहता था, जो वस्तुते बेरेखिया का पुत्र शिमिया का पुत्र था, जो मिखाएल का पुत्र था, जो बासेया का, जो मालखिया का, जो एथनी का, जो जोरा का, जो अधाया का, जो एथन का, जो जिम्मा का, जो शिमेई का, जो याहात का, जो गेरशोम का, जो लेवी का पुत्र था। उनके बाएं पक्ष में उनके संबंधी मेरारी वंशज खड़े हुआ करते थे। कीशी का पुत्र एथन, जो अब्दी का, जो मल्लूख का, जो हशाबिया का, जो अमाज़िया का, जो हिल्किया का, जो आमजी का, जो बानी का, जो शेमर का, जो माहली का, जो मूशी का, जो मेरारी का, जो लेवी का पुत्र था। लेवी उनके संबंधी मिलन वाले तंबू और परमेश्वर के भवन संबंधी सेवा के लिए चुने गए थे, मगर अहरोन और उसके पुत्र वेदी पर होमबलि चढ़ाते और धूप वेदी पर धूप जलाते, परम पवित्र स्थान संबंधी कार्य और परमेश्वर के सेवक मोशे के आदेश अनुसार इज़राइल के लिए प्रायश्चित किया करते थे। ये अहरोन के वंशज थे। उसका पुत्र एलियाजर, उसका पुत्र फिनिहास, उसका पुत्र अबीशुआ, उसका पुत्र बुक्की, उसका पुत्र उज्जी जेराइया, उसका पुत्र मेराइयोत, उसका पुत्र अमरिया, उसका पुत्र अहितूब, उसका पुत्र सादोक और उसका पुत्र अहिमाज था। उनकी सीमाओं ही के भीतर उनके शिविरों के आधार पर उनके उपनिवेश इस प्रकार थे। मतपत्रों के आधार पर सर्वप्रथम स्थान अहरोन के पुत्रों के परिवार को प्राप्त हुआ था। अहरोन वंशजों को जो कोहाथी कुल के थे, क्योंकि चिट्ठी डालकर वे ही इसके लिए पहले स्थान के लिए चुने गए थे। इन्होंने उन्हें यहूदिया में हेब्रोन क्षेत्र दे दिया, साथ ही इसके आसपास के चरागाह भी, किंतु नगर के बीच के खेत और इसके गांव उन्होंने यफुन्ने के पुत्र कालेब को दे दिए। अहरोन के पुत्रों को उन्होंने शरण शहर दे दिए, हेब्रोन, लिबना और इसकी सभी चरागाह, हिलेन और देबीर, आशान, यूथा और बेत शेमेश और उनकी चरागाह। तब बिन्यामीन गोत्र की सीमा से गिबियोन, इसके चरागाहों से इसके चरागाहों समेत गेबा, अलेमेत, अनाथोत, इसके सभी उनके ये सभी नगर उनके गोत्रों के अधिकार में हमेशा ही बने रहे। ये कुल 13 नगर थे। तब कोहात की शेष संतान को ये चिट्ठी डालकर बांट दिए गए। परिवार के गोत्र से, अर्धकुल से, मनशशे के आधे गोत्र से 10 नगर, गेरशोम के पुत्रों को उनके परिवार के अनुसार, इसाखार के गोत्र में से, आशेर के गोत्र में से, नफ्ताली के गोत्र में से और बाशान में, मनशशे के गोत्र में से 13 नगर प्रदान किए गए। मेरारी वंशजों को उनके कुलों के अनुसार रियूबेन के, गाद के और जेबुलून के कुलों से 12 नगर बांटे गए। इस प्रकार इज़राइल वंशजों को वे नगर दे दिए जिनमें चरागाह भी थे। यहूदा गोत्र के कुलों से उन्होंने चिट्ठियों द्वारा शिमोन वंश के कुलों और बिन्यामीन वंश के कुलों को ये नगर जिनका उल्लेख किया जा चुका है दे दिए। कोहात वंश के कुछ परिवारों के पास एफ्राइम गोत्र की सीमा में के कुछ नगर थे, उन्होंने इन्हें ये शरण शहर दे दिए। एफ्राइम के पर्वतीय क्षेत्र का शेकेम और इसके चरागाहों के साथ गेजेर, योकमेयम, बेत होरोन, चरागाहों के साथ अयजालोन, चरागाहों के साथ गथ रिमोन, तब मनशशे के आधे गोत्र में से चरागाहों के साथ एनर और चरागाहों के साथ बिलाम, मनशशे के अर्ध गोत्र में से गेरशोन वंशजों को चरागाहों के साथ बाशान क्षेत्र में गोलान और चरागाहों के साथ अश्तारोत, इसाखार के गोत्र में से चरागाहों के साथ के देश, चरागाहों के साथ दाबरत, चरागाहों के साथ रामोत, चरागाहों के साथ आनेम, आशेर के गोत्र से चरागाहों के साथ माशाल, चरागाहों के साथ अब्दोन, चरागाहों के साथ हुक्कोक और चरागाहों के साथ रेहोब, नफ्ताली के गोत्र में से चरागाहों के साथ गलील में केदेश, चरागाहों के साथ हम्मोन और चरागाहों के साथ किरियाथियों। मेरारी वंशज शेष लेवियों को जेबुलून के गोत्र में से चरागाहों के साथ रिमोन, चरागाहों के साथ ताबोर और यर्दन पार यरीखो में यर्दन के पूर्वी तट पर रियूबेन के गोत्र में से चरागाहों के साथ बेजर, जो बंजर भूमि में था, चरागाहों की साथ यहत्स, चरागाहों के साथ केदेमोत और चरागाहों के साथ मेफात। गाद के गोत्र में से चरागाहों के साथ गिलाद में रामोत, चरागाहों के साथ महनाइम, चरागाहों के साथ हेशबोन और याजर। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 7। इसाखार वंशज। इसाखार के पुत्र तोला, उहा, याशूब और शिमरोन, चार पुत्र। तोला के पुत्र उज्जी, रेफाइया, येरियल, यहमाई, इब्साम और शैमुएल, ये अपने पूर्वजों के परिवारों के प्रधान थे। तोला के पुत्र अपनी पीढ़ी में वीर योद्धाओं के रूप में मशहूर थे। दाविद के शासनकाल में इनकी संख्या 22,600 आंकी गई थी। उज्जी का पुत्र यिज्राहिया था। यिज्राहिया के पुत्र मिखाएल, ओबदिया, योएल, इशिया, ये पांचों ही प्रधान थे। उस पीढ़ी में उनके साथ उनके पूर्वजों के गोत्र के अनुसार युद्ध के लिए सेना की टुकड़ियां तैयार थीं, जिनकी संख्या 36,000 थी। इस संख्या का कारण था उनकी अनेक पत्नियां और उनसे पैदा अनेक पुत्र। इसाखार के सभी परिवारों में सभी संबंधी वीर योद्धा थे। उनका लेखा वंशावली में रखा गया है। ये कुल 87,000 योद्धा थे। बिन्यामीन वंशज। बिन्यामीन के तीन पुत्र बेला, बेकेर और येदियाएल। बेला के पांच पुत्र एसबोन, उज्जी, उज़ियेल, येरीमोत और ईरी, ये अपने पिता के परिवार के प्रमुख थे। वंशावली लेखा के अनुसार ये 22,034 सभी वीर योद्धा थे। बेकेर के पुत्र जेमेरिया, योआश, एलियाजर, एलियोइनाई, ओमरी, येरेमोत, अभिया, अनाथोत और अलेमेत, ये सभी बेकेर के पुत्र थे। इनका नामांकन इनकी पीढ़ी के अनुसार वंशावली में किया गया है। ये अपने पूर्वजों के परिवार में नायक रहे। इन वीर योद्धाओं की संख्या 20,200 थी। येदियाएल का पुत्र बिलहान, बिलहान के पुत्र येउश, बिन्यामीन, एहूद, केनाना, जेथान, तर्शीश और अहिशाहर, उनके पिता के परिवार के प्रमुखों के अनुसार ये येदियाल के पुत्र हुए। ये सभी शूर योद्धा थे। संख्या में 17,200। ये सभी युद्ध के लिए निपुण थे। ईर के पुत्र थे शुप्पीम और हुप्पीम। अहेर का पुत्र था हुशीम। नफ्ताली वंशज। नफ्ताली के पुत्र यहत्सियेल, गुनी, येसेर और शल्लूम, ये सभी बिलहा से उत्पन्न पुत्र थे। मनशशे के वंशज। मनशशे के पुत्र उसकी अरामी उपपत्नी से पैदा पुत्र असरियेल, उसी से पैदा हुआ गिलाद का पिता माखीर। माखीर ने हुप्पीम और शुप्पीम का विवाह कर दिया। उसकी बहन का नाम माखा था और दूसरी बहन का नाम था जलोफेहाद। जलोफेहाद ने पुत्रियों को जन्म दिया। माखीर की पत्नी माखा ने एक पुत्र को जन्म दिया, उसने जिसका नाम रखा पेरेश। उसके भाई का नाम था शेरेश। पेरेश के पुत्र उलाम और रेकेम। उलाम का पुत्र था बेदान। ये सभी गिलाद के पुत्र, माखीर के पोते और मनशशे के परपोते थे। माखीर की बहन हम्मोलेखेत ने इशहोद, अबीएजर और महला को जन्म दिया। शेमीदा के पुत्र थे अहियान, शेकेम, लीखी और आनियम। एफ्राइम वंशज। एफ्राइम वंशज शूतेला, उसका पुत्र बेरेद, उसका पुत्र ताहात, उसका पुत्र एलियाद, उसका पुत्र ताहात, उसका पुत्र जाबाद, उसके पुत्र शेतुला, एजर और एलियाद, इन दोनों का वध गात के निवासियों द्वारा उस समय कर दिया गया था जब ये दोनों उनके पशुओं की चोरी करते हुए पकड़े गए थे। इनके लिए इनका पिता एफ्राइम लंबे समय तक दुख में डूबा रहा। उसके संबंधी उसे सांत्वना देने उसके पास जाते रहे। इसके बाद उसने अपनी पत्नी से संबंध बनाए। वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया बेरिया, यानी मुसीबत, क्योंकि उसके परिवार पर मुसीबत आई हुई थी। उसकी पुत्री का नाम था शीरा। उसने ऊपर वाले और नीचे वाले बेथोरोन नगरों और उज्जैन शीरा नगर का निर्माण किया था। उसका पुत्र था रेफा, उसका पुत्र था रेशेफ, उसका पुत्र तेला, उसका पुत्र तहान, उसका पुत्र लादान, उसका पुत्र अमीहूद, उसका पुत्र एलिशामा, उसका पुत्र नून और उसका पुत्र यहोशू। इनका स्वामित्व और घर बेथेल और उसके आसपास के गांव, पूर्वी नारन, पश्चिमी गेजेर और इसके नगरों, शेकेम और इसके नगरों में और अय्या और इसके नगरों में था। मनशशे वंशजों के अधिकार में बेत शान और इसके नगर, तानक और उसके नगर, मगीदो और उसके नगर, इन सभी नगरों में इज़राइल के पुत्र योसेफ के वंशज निवास करते थे। आशेर वंशज। आशेर के पुत्र इम्ना, इश्वा, इश्वी, बेरिया और उनकी बहन सेरा। बेरिया के पुत्र एबेर और मालखियेल, जो पिता था बिरतसाइत का। एबेर पिता था याफलेत, शोमर, ओथाम और इनकी बहन शुआ का। याफलेत के पुत्र पासाक, बिमहाल और अश्वात, ये यफलेत के पुत्र थे। उसके भाई शेमर के पुत्र अही, रोहगा, यहुब्बा और आराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र जोफा, इम्ना, शेलेश और आमाल। जोफा के पुत्र सुहा, हारनेफर, शुआल, बेरी, इमरा, बेजर, ओद, शम्मा, शिलशा, इथरान और बियरा। येथेर के पुत्र येफुन्ने, पिस्पा और आरा। उल्ला के पुत्र आरा, अनियेल और रिजिया। ये सभी आशेर वंश के पुरुष थे, अपने गोत्र पिता के परिवारों के प्रमुख प्रमाणित वीर योद्धा, प्रशासकों के प्रधान थे। उनकी संख्या वंशावली द्वारा गिनी गई थी कि वे युद्धकाल में जाकर युद्ध करें, ये संख्या में 26,000 पुरुष थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 8। बिन्यामीन वंशज के ब्योरा दुबारा। बिन्यामीन अपने पहलौठे बेला का पिता हुआ। दूसरा पुत्र था अशबेल, तीसरा अहारा, चौथा नोहा और पांचवा पुत्र था राफा। बेला के पुत्र अधार, गेरा, अबिहूद, अबिशुआ, नामान, अहो, गेरा, शपूपान और हूरम। एहूद के पुत्र ये गेबा निवासियों के अधिकारी थे। इन्हें ही मानाहात को बंधुआई में ले जाया गया था। नामान, अहिया और गेरा अर्थात हेगलाम, जो उज्जा और अहिहूद का पिता हुआ। शहराइम जब हुशीम और बायरा नामक अपनी पत्नियों को विदा कर चुका, मोआब देश में वह पुत्रों का पिता हुआ। वह अपनी पत्नी होदेश के द्वारा इन पुत्रों का पिता हुआ। योबाब, जिभिया, मेशा, मालकम, येउत्स, साकिया और मिर्मा। उसके ये पुत्र पूर्वजों के परिवारों के प्रधान हुए। हुशीम के द्वारा भी वह पुत्रों का पिता हुआ। अबितूप और एलपाल, एलपाल के पुत्र एबर, मीशाम और शेमेद, जितने ओनो और लोद को और उसके आसपास के गांव सहित पसाया। बेरहिया और शेमा, ऐजालोन के उन निवासियों के पूर्वजों के परिवारों के प्रधान थे, जिन्होंने गाथ में बसे हुए लोगों को नगर छोड़ भागने के लिए विवश कर दिया था। और अहियो, शासक और येरेमोत, जेबादिया, अराद, एदर, मिखाइल, इश्पा और योहा बेराया के पुत्र थे। जेबादिया, मेशुल्लाम, इजकी, एबेर, इश्मेराई, इजलिया और योबाब एलपाल के पुत्र थे। याकीम, जिक्री, जब्दी, एलियनाई, जिलेथाई, एलियल, अदाइया, बेराया और शिमरात, शिमेई के पुत्र थे। इश्पान, एबर, एलियल, अब्दोन, जिक्री, आनन, हनिया, एलाम, अंतोथिया, इफदेया और पनुएल शासक के पुत्र थे। शमशेराई, शेहरिया, अथालिया, यारेशिया, एलिया और जिक्री, यरोहाम के पुत्र थे। ये अपनी पीढ़ियों के अनुसार अपने अपने परिवारों के प्रधान नायक थे। ये सभी यरूशलेम में रहते थे। गिबियोन का पिता यहीएल गिबियोन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माखा था। उसका पहलौठा पुत्र था अब्दोन। इसके बाद पैदा हुए जूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गेदोर, आहियो और जेकर। मिखलोत सिम्हा का पिता हो गया। ये लोग भी यरूशलेम में अपने दूसरे रिश्तेदारों के सामने रह रहे थे। नेर कीश का पिता था। कीश शाउल का, शाउल योनातन, मालखी शुआ, अबीनादाब और एशबाल का। योनातन का पुत्र था मेरीब बाल। मेरीब बाल जो मीखा का पिता था। मीखा के पुत्र पीथोन, मेलेक, तारिया और आहाज। आहाज पिता हुआ यहोआधा का। यहोआधा पिता था अलेमेत, अजमावेत और जिमरी का। जिमरी पिता था मोत्सा का। मोत्सा पिता था बिनिया का। उसके पुत्र थे राफा, एलासा उसके पुत्र, आजेल उसके पुत्र। आजेल के छह पुत्र थे जिनके नाम निम्न लिखित हैं: अजरीकाम, बोखेरू, इश्माइल, शियारिया, ओबदिया और हनान। ये सभी आजेल के पुत्र थे। उसके भाई एशेक के पुत्र उलाम उसका पहलौठा, यीऊश दूसरा पुत्र, एलीफेलेत उसका तीसरा पुत्र। उलाम के सभी पुत्र बलवान योद्धा और धनुर्धारी थे। उनके अनेक पुत्र और पोते हुए, गिनती में 150। ये सभी बिन्यामीन वंश के थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 9। इस प्रकार पूरे इज़राइल का नाम वंशावली में पूरा पूरा लिख लिया गया। यह इज़राइल के राजा नामक पुस्तक में लिखा गया था। अपने विश्वासघात के कारण यहूदिया को बंधुआई में बाबेल ले जाया गया। यरूशलेम के निवासी, वे जो बंधुआई से लौटे, उनमें सबसे पहले वे थे जो अपने अपने नगरों में अपनी ही संपत्ति में आकर बसे थे। उनमें कुछ इज़राइली थे, कुछ पुरोहित थे, कुछ लेवी थे और कुछ मंदिर में सेवा के लिए ठहराए गए सेवक थे। कुछ यहूदिया के रहने वाले बंधुए, कुछ बिन्यामीन के वंशज और कुछ एफ्राइम और मनशशे के वंशज आकर यरूशलेम में बस गए। उथाई जो अमीहूद का पुत्र था, जो ओमरी का, जो इमरी का, जो बानी का, जो पेरेज के पुत्रों में से था, जो यहूदा का पुत्र था। शीलोनी वंश के लोगों में से पहलौठा असाइया और उसके पुत्र। जेरा के पुत्रों में से येउल और उसके 690 संबंधी। बिन्यामीन वंश से सल्लू जो मेशुल्लाम का पुत्र था, जो होदविया का पुत्र था, जो हसनुआ का पुत्र था। इब्निया येरोहाम का पुत्र था। एला जो उज्जी का पुत्र था, जो मिक्री का पुत्र था। और मेशुल्लाम शेपाथिया का, जो रियूएल का इब्निया जेरोहाम का पुत्र था। पीढ़ियों की वंशावली के अनुसार ये बिन्यामीन वंश कुल 956 थे। पितरों के गोत्रों की वंशावली के अनुसार ये सभी अपने अपने गोत्र के प्रधान थे। पुरोहितों में से येधाइया, यहोयारीब, याकीन और अजरिया जो हिल्किया का पुत्र था, जो मेशुल्लाम का, जो सादोक का, मेरायोत का और जो अहितूब का, जो परमेश्वर के भवन का मुख्य अधिकारी था। और अधाइया जो येरोहाम का, जो पशहूर का, जो मालखिया का, जो मासाई का, जो आदियेल का, जो यहत्सेरा का, जो मेशुल्लाम का, जो मेशिलेमेत का, जो इमर का पुत्र था। उनके रिश्तेदारों के अलावा उनके पितरों के कुलों के प्रमुख, ये 1760 बलवान व्यक्ति परमेश्वर के भवन में सेवा के लिए तैयार व्यक्ति थे। लेवियों में से शेमाया जो हसशूब का पुत्र था, जो अजरीकाम का, जो हशाबिया का, जो मेरारी का पुत्र था। बकबक्कर, एरेश, गलाल और मथनिया जो मीका का पुत्र था, जो जिक्री का, जो आसफ का पुत्र था। और ओबदिया जो शेमाया का, जो गलाल का, जो यदुथून का। और बेरखिया जो आसा का, जो एलकाना का, जो नेतोफातियों के गांव में निवास करता रहा था। द्वारपाल थे शल्लूम, अक्कूब, तालमोन, अहिमान और उनके संबंधी, जिनमें शल्लूम सबका प्रधान था। वे सभी अब तक राजा के पूर्वी द्वार पर चुने जाने के कारण लेवियों के शिविरों के द्वारपाल रहे। शल्लूम जो कोरे का पुत्र था, जो एबियासफ का, जो कोरा का और उसके पिता के परिवार के संबंधी, कोरा के वंशज, सेवा करने के अधिकारी थे। वे शिविर की ड्योढ़ी के लिए चुने गए थे, ठीक जिस प्रकार उनके पूर्वज यहावे के शिविर के अधिकारी थे, यानी फाटक के। इसके पहले एलियाजर का पुत्र फिनिहास इन सबके ऊपर प्रधान अधिकारी रहा। यहावे उसके साथ रहता था। मिलन वाले तंबू के द्वार पर मेशेलेमिया के पुत्र जकरिया को द्वारपाल रखा गया था। ड्योढ़ी के लिए चुने गए ये द्वारपाल गिनती में 212 थे। उनकी गिनती उनके गांव की वंशावली में की गई है। दाविद और दर्शी शैमुएल ने इनको विश्वास योग्य देखकर इन्हें इस पद पर ठहराया था। ये सब और इनके पुत्र यहावे के भवन के द्वारों के अधिकारी थे, अर्थात तंबू के पहरेदार। ये द्वारपाल पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं में ठहराए गए थे। हर सप्ताह उनके गांव से उनके भाई बंधुओं का वहां आकर उनके साथ रहना तय था, क्योंकि चार प्रमुख द्वारपालों को, जो विश्वासीय लेवी थे, परमेश्वर के भवन के कमरों और खजाने की जवाबदारी सौंपी गई थी। रात में वे परमेश्वर के भवन के आसपास ही रहते थे, क्योंकि इसकी रक्षा करना और इसे हर सुबह खोलने की चाबी उन्हीं की जवाबदारी में थी। इनमें से कुछ बलि चढ़ाने वाले बर्तनों के अधिकारी थे, क्योंकि जब ये बाहर ले जाए जाते और लौटाए जाते थे, उनकी गिनती करना जरूरी होता था। इनमें से अन्यों को मेजों, सभी पवित्र बर्तनों, साथ ही मैदा, अंगूर के रस, तेल, गंधरस और मसालों के प्रबंध के लिए चुना गया था। पुरोहितों के दूसरे पुत्रों की जवाबदारी थी इस्तेमाल के लिए मसालों को तैयार करना। एक लेवी कोहरावंशी शल्लूम के पहलौठे मतीथिया की जवाबदारी थी पतली पतली रोटियां बनाना। इसके अलावा कोहात के संबंधियों में से कुछ व्यक्ति हर शब्बात भेंट की रोटी तैयार करने के अधिकारी थे। लेवी के पितरों के कुलों के प्रधान, जो गायक थे, मंदिर के कमरों में ठहराए गए थे। उन्हें अन्य कोई काम सौंपा नहीं गया था, क्योंकि उनका काम ही ऐसा था जिसमें वे रात दिन व्यस्त रहते थे। ये सभी अपनी अपनी पीढ़ियों के अनुसार लेवी के पितरों के कुलों के प्रधान थे, जिनका घर यरूशलेम में ही था। शाऊल का वंशानुक्रम। गिबियोन का पिता यहीएल गिबियोन में रहता था। उसकी पत्नी का नाम माखा था। उसका पहलौठा पुत्र था अब्दोन। इसके बाद पैदा हुए जूर, कीश, बाल, नेर, नादाब, गेदोर, आहियो, जकरिया और मिकलोत। मिकलोत सीमा का पिता हो गया। ये लोग भी यरूशलेम में अपने दूसरे रिश्तेदारों के सामने रह रहे थे। नेर कीश का पिता था। कीश शाऊल का, शाऊल योनातन, मालखी शुआ, अबीनादाब और एशबाल का। योनातन का पुत्र था मेरी बाल, जो मीखा का पिता था। मीखा के पुत्र पीथोन, मेलेक, तहारिया और आहाज। आहाज पिता था यारा का। यारा अलेमेत, अजमावेत और जिमरी का। जिमरी मोत्सा का। मोत्सा पिता था बिनिया का। उसके पुत्र थे रेफाइया, एलासा उसके पुत्र, आजेल उसके पुत्र। आजेल के छह पुत्र थे, जिनके नाम निम्नलिखित हैं: अजरीकाम, बोखेरू, इश्माइल, शियारिया, ओबदिया और हनान। ये आजेल के पुत्र थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 10। शाऊल व उसके पुत्रों की मृत्यु। फिलिस्तीनियों ने इसराइल पर हमला कर दिया। इसराइली सैनिक फिलिस्तीनियों के सामने टिक ना सके। अनेक गिलबोआ पर्वत पर मारे गए। फिलिस्तीनियों ने शाऊल और उनके पुत्रों को जा पकड़ा, और उन्होंने शाऊल के पुत्रों योनातन, अबीनादाब तथा मालखी शुआ की हत्या कर दी। शाऊल के आसपास युद्ध बहुत ही उग्र था। धनुर्धारियों ने उन्हें देख लिया और उन्हें गंभीर रूप घायल कर दिया। शाऊल ने अपने शस्त्र वाहक को आदेश दिया, इसके पहले कि ये अखतनीत आकर मेरी दुर्गति करके मुझ पर तलवार का प्रहार करे, तुम अपनी तलवार से मुझ पर प्रहार कर दो। मगर उस भयभीत हथियार उठाने वाले ने यह विनती अस्वीकार कर दी। तब स्वयं शाऊल ने अपनी तलवार निकाली और उस पर गिर पड़े। जब हथियार ढोने वाले ने यह पाया कि शाऊल की मृत्यु हो गई है, वह भी उसी प्रकार अपनी तलवार पर जा गिरा और उसकी भी मृत्यु हो गई। इस प्रकार शाऊल और उनके तीनों पुत्रों की मृत्यु हो गई, साथ ही उसके पूरे परिवार की भी मृत्यु हो गई। जब घाटी के इसराइलियों ने देखा कि इसराइली सेना पीठ दिखाकर भाग रही है, शाऊल और उनके पुत्र युद्ध में मारे गए हैं, वे नगर छोड़ छोड़कर भागने लगे। तब फिलिस्तीनी आए और नगरों में निवास करने लगे। अगले दिन जब फिलिस्तीनी आए कि शवों पर से जो मिल सके अपने लिए उठा ले जाए, उन्हें गिलबोआ पर्वत पर शाऊल और उसके पुत्रों के शव दिखाई दिए। उन्होंने शाऊल का सिर काटा, उनके कपड़े उनकी शव से उतार लिए और यह संदेश सारा फिलिस्तिया देश में अपने देवताओं के तथा लोगों के बीच फैलाने के लिए दूतों को भेज दिया। उन्होंने शाऊल के हथियार अपने देवताओं के मंदिर में रखवा दिए और उसके सिर को अपने देवता दागोन के मंदिर में लटका दिया। जब पूरे याबेश गिलाद वासियों तक यह समाचार पहुंचा कि शाऊल के साथ फिलिस्तीनियों ने कैसा व्यवहार किया है, सारे वीर योद्धा इकट्ठे हो गए और जाकर शाऊल के और उसके पुत्रों के शव उठाकर याबेश नगर को ले आए। उन्होंने इन शवों की अस्थियों को याबेश नगर के बांज पेड़ के नीचे गाड़ दिया और उनके लिए 7 दिन तक उपवास रखा। शाऊल की मृत्यु का कारण था यहावे के प्रति उनके द्वारा किया गया विश्वासघात। उन्होंने यहावे के आदेश का पालन नहीं किया था। इसके अलावा उसने भूत सिद्धि करने वाली की राय भी ली थी। उसने यहावे से मार्गदर्शन लेना जरूरी ना समझा था, इसी कारण यहावे ने उसके प्राण ले लिए और राज्य का प्रशासन येशे के पुत्र दाविद के हाथों में दे दिया। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 11। दाविद का राज अभिषेक। इसके बाद सारा इसराइल हेब्रोन में दाविद से भेंट करने इकट्ठा आए और उनके समक्ष यह प्रस्ताव रखा, विचार कीजिए, हम आप ही की अस्थि और मांस है। पिछले सालों में जबकि राजा तो शाऊल थे, किंतु ये आप ही थे जो हमारा मार्गदर्शन और इजरायली सेना को चलाते रहे। यहावे आपके परमेश्वर ने आपसे कहा था, तुम मेरी प्रजा इसराइल के चरवाहे होगे, तुम मेरी प्रजा इसराइल के शासक होगे। इसलिए इसराइल के सारे प्राचीन हेब्रोन नगर में राजा के सामने इकट्ठा हुए। राजा दाविद ने यहावे के सामने उनसे वाचा बांधी। तत्पश्चात उन्होंने यहावे के संदेश के अनुसार, जो उन्होंने शमूएल द्वारा दिया गया था, इसराइल देश के लिए दाविद का राज अभिषेक किया। दाविद द्वारा यरूशलेम का अधिग्रहण। दाविद और सारा इसराइल यरूशलेम की ओर गया, यरूशलेम यानी यबूस, जहां यबूसी रहते थे। यही क्षेत्र के मूल निवासी थे। यबूसियों ने दाविद से कहा, आप इस नगर में कभी आने ना पाओगे। फिर भी दाविद ने जियोन गढ़ पर अधिकार कर लिया, जिसे दाविद नगर भी कहा जाता है। दाविद ने घोषणा की, जो कोई सबसे पहले यबूसियों पर हमला करेगा, सेना का प्रधान और सेनापति ठहराया जाएगा। जेरुया का पुत्र योआब सबसे पहले वहां पहुंच गया, तब उसे सेनापति का पद दे दिया गया। दाविद ने गढ़ में रहना शुरू कर दिया। यही कारण है कि यह दाविद नगर नाम से जाना जाने लगा। दाविद ने इसी के चारों ओर नगर को बनाया, मिल्लो से शुरू करते हुए आसपास के इलाके तक। योआब ने नगर का बाकी काम भी पूरा किया। दाविद पर सर्वशक्तिमान यहावे की कृपा दृष्टि थी। तब दाविद धीरे धीरे मजबूत होते चले गए। दाविद के शूरवीर। दाविद के वीरों में प्रमुख, जो इजरायली सेना के अलावा उनके राज्य में उनके लिए मजबूत आधार थे, जिन्होंने दाविद को राजा बनाने में इज़राइल के संबंध में यहावे के वचन के अनुसार सहयोग दिया था। दाविद के उन वीरों की गिनती इस प्रकार है। अकमोन बासी यासोबाम 30 का प्रमुख था। उसने 300 सैनिकों पर अपने भाले से वार किया और एक ही वार में इनको मार डाला। उसके बाद अहोही दोदो का पुत्र इलियासर, जो 3 वीरों में से एक था, पस दम्मीम में वही दाविद के साथ था जब वहां फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए मोर्चा बांधा था। वहां जौ की उपज का एक खेत था। प्रजा फिलिस्तीनियों से बचकर भाग रही थी। उन्होंने खेत के बीच में रहते हुए उनका सामना किया, उस खेत की रक्षा करते रहे और फिलिस्तीनियों को मार गिराया। यहावे ने बड़ी जीत के द्वारा उनकी रक्षा की। चट्टान में अदुल्लाम गुफा में 30 प्रमुख अधिकारियों में से 3 दाविद से भेंट करने गए। इस समय फिलिस्तीनी सेना रेफाइम की घाटी में शिविर डाले हुए थी। इस समय दाविद गढ़ में थे और फिलिस्तीनी सेना बेथलेम में। बड़ी इच्छा से दाविद कह उठे, कैसा सुखद होता अगर कोई बेथलेम फाटक के पास के कुएं से मुझे पीने के लिए पानी ला देता। वे तीनों फिलिस्तीनियों के शिविर में से बचते बचाते जाकर उस कुएं से, जो बेथलेम के द्वार के निकट था, दाविद के लिए जल ले आए। मगर दाविद ने वह जल पिया नहीं, उन्होंने उसे यहावे के सामने उंडेल दिया और कहा, मेरे परमेश्वर के सामने मुझसे यह काम कभी ना हो। क्या मैं इन लोगों का लहू पीऊं जो अपने प्राण जोखिम में डाल मेरे लिए यह जल लाए हैं? इसलिए दाविद ने वह जल नहीं पिया। ऐसे साहसिक थे इन वीरों के कार्य। योआब का भाई अभिशाई 30 सैनिकों पर अधिकारी था। उसने 300 पर अपनी बर्छी घुमाई और उनको मार गिराया। उसने भी उन तीनों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त की। दूसरे वर्ग में जो 3 थे, उनमें वह सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। वही उनका प्रधान बन गया, मगर वह उन 3 के सामने ना आ सका। कब्जियेल के एक वीर के पोते यहोयादा के पुत्र बेनहिया ने बड़े बड़े काम किए थे। उसने मोआब के अरियेल के 2 पुत्रों को मार गिराया। उसने ही उस दिन जब बर्फ गिर रही थी जाकर एक गड्ढे में बैठे सिंह का वध किया था। उसने एक बहुत ही लंबे कद के मिस्रवासी का, जो लगभग 7.5 फुट का था, वध किया था। उस मिस्री के हाथ में जो भाला था, वह बुनकर की बल्ली के समान था। किंतु बेनाइया अपने हाथ में सिर्फ एक लाठी ले उसके निकट गया और उस मिस्री के हाथ से उसका भाला छीन उसी से उसको मार डाला। यहोयादा के पुत्र बेनाइया ने ये सारे काम किए और उन 3 वीरों के समान प्रतिष्ठा प्राप्त की। वह उन 30 में ही प्रख्यात हुआ, मगर उन 3 के तुल्य नहीं। दाविद ने उसे अपने अंगरक्षक का अधिकारी नियुक्त कर दिया। वीर ये थे, योआब का भाई आसाहेल, बेथलेम वासी दोदो का पुत्र एलहानन, हारोर का शमोत, पेलेन का हेलेस, तकुआ के इक्केश का पुत्र ईरा, अनाथोत वासी एबियजर, उशाती सिब्बेकाई, अहोही ईलाई, नेतोफाही महाराई, नेतोफाही का ही बहना का पुत्र हेलेद, बिन्यामीन वंश के गिबिया के रिबाई का पुत्र ईथाई, पिराथोन वासी बेनाइया, गाश की नदियों से हुराई, अरबात वासी अबियल, बहारूम वासी अजमावेत, शलबोनी एली अहाब, गीजोनी हशेम के पुत्र, हरार वासी शागी का पुत्र योनातन, हरार वासी साकार का पुत्र अहियम, ऊर का पुत्र एलिफाल, मेखेराथी हेफेर, पेलोन वासी अहिया, कर्मेल का हेजोरो, एजबाई का पुत्र नाराई, नाथान का भाई योएल, हागरी का पुत्र मिबहार, अमोन वासी सेलेक, बीरोथ वासी नहराई, जो जेरुया के पुत्र योआब का हथियार उठाने वाला था, इथरवासी ईरा, इथरवासी गारेब, हित्ती उरिया, अहलाई का पुत्र जाबाद, रूबेन वंशी, शीजा का पुत्र आदीन, जो रूबेन वंशों का प्रधान था, ये 30 भी उसके साथ थे, माखा का पुत्र हानन, और मिथिनवासी यहोशाफात, अश्तारोथवासी उज्जिया, अरोअरवासी होथाम के पुत्र शमा और येइल, शिमरी का पुत्र येदीआएल और उसका भाई तित्सी योहा, महाववासी एलियल, एलनाम के पुत्र येरीबाई और योसाविया और मोआबी इथमा, एलियल, ओबेद और मेतसोबावासी यासियल। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 12। शूरवीर दाविद के साथ। ज़िकलाग में दाविद के समर्थक ये वे व्यक्ति हैं जिन्होंने ज़िकलाग में दाविद की शरण ली थी जब उन पर कीश के पुत्र शाऊल द्वारा रोक लगा दी गई थी। ये सभी उन वीर योद्धाओं में से थे जिन्होंने युद्ध में दाविद की बड़ी सहायता की थी। ये धनुर्धारी सैनिक थे जो धनुष चलाने में निपुण होने के साथ साथ दाएं अथवा बाएं दोनों हाथों से गोफन में पत्थर रखकर छोड़ सकते थे। ये बिन्यामीन प्रदेश से शाऊल के रिश्तेदार थे। इनका प्रधान था एहियाजर। इसके बाद योवाश। ये दोनों ही गिबियात वासी शेमा के पुत्र थे और अजमावेत के पुत्र। येत्सियेल और पेलेत, बेराका, अनाथोथी येहू, गिबियोन वासियों का इश्माइया जो उन तीस में शामिल एक वीर था और वह उन तीसों का प्रधान था। येरेमिया, यहाजियेल, योहानन, गेदेरा का योजाबाद, एलुत्साई, येरीमोत, बालिया, शेमारियाहू, आरूफी शेपाथिया, एलकाना, इशिया, अजरेल योत्सर और यासोबाम। ये सभी कोरा के वंशज थे और गेदोर के येरोहाम के पुत्र योइला और जेबादिया। जब दाविद बंजर भूमि के गढ़नगर में थे गाद प्रदेश से उनके पास बलवान और अनुभवी सैनिक जा पहुंचे। ये भाले और ढाल के कौशल में निपुण थे। इनका मुखमंडल सिंहों के मुख के समान था जो ऐसी तेजी से दौड़ते थे जैसे पहाड़ों पर दौड़ती हिरनी। प्रधान था एजर, दूसरा ओबदिया, तीसरा एलियाब, मिशमन्ना चौथा, येरेमिया पांचवा, अत्तई छठा, एलियल सातवा, योहानन आठवा, एलजाबाद नौवा, येरेमिया दसवा, मकबन्नाई ग्यारवा। गाद के वंशजों में से ये सेना के अधिकारी थे। इसमें निपुणता में सबसे छोटा भी उनके 100 के समान था और सबसे बड़ा 1000 के बराबर। ये ही वे हैं जिन्होंने पहले महीने में यर्दन नदी को उस स्थिति में पार किया था जब नदी का पानी दोनों तटों से उमड़कर बह रहा था। उन्होंने घाटियों के निवासियों को भगाकर पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं में भगा दिया। इसके बाद बिन्यामीन और यहूदा के वंशज दाविद से भेंट करने गढ़ में आए। दाविद उनसे भेंट करने बाहर आ गए। दाविद ने कहा, यदि आप मित्र भाव में मेरी सहायता के उद्देश्य से मुझसे मिलने आए हैं मेरा हृदय आपसे जुड़ जाएगा, मगर यदि यह मुझे मेरे शत्रुओं के हाथों में सौंपने की योजना है इसलिए कि मेरे हाथों ने कुछ भी गलत नहीं किया है। हमारे पूर्वजों के परमेश्वर ही इस पर दृष्टि करके निर्णय करें। इसी समय पवित्र आत्मा आमासाई पर जो उन 30 पर प्रधान था उतरे और आमासाई यह कहने लगा, दाविद हम आपके हैं, यिशे के पुत्र हम आपके साथ हैं, शांति आप पर शांति बनी रहे, शांति आपके सहायकों पर बनी रहे, निसंदेह आपके परमेश्वर आपकी सहायता करते हैं। यह सुन दाविद ने उन्हें स्वीकार कर लिया और उन्हें सैनिकों का प्रधान बना दिया। दाविद जब शाऊल के विरुद्ध फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध के लिए तैयार हो ही रहे थे कि कुछ मनशशे वासी भी दाविद के साथ हो गए। फिर भी दाविद फिलिस्तीनियों के साथ युद्ध पर नहीं गए क्योंकि फिलिस्तीनियों के अधिकारियों ने आपस में विचार विमर्श किया और दाविद को इस शक के साथ लौटा दिया, हमारे सिरों को कटवा कर वह अपने स्वामी शाऊल के पास लौट जाएगा। दाविद जब वहां से ज़िकलाग को गए मनशशे वासी अधना, योजाबाद, येदियाल, मिखाइल, योजाबाद, एलीहू और जिल्लेथाई दाविद की ओर आ गए थे। ये सभी हजारों के मुखिया मनशशे प्रदेश के थे। इन सभी ने छापामारों से दाविद को सुरक्षा दिलाई थी क्योंकि ये सभी बहुत ही वीर और सेना के प्रधान भी थे। लोगों का दाविद के पास आने का काम चलता रहा और देखते ही देखते परमेश्वर की सेना के समान एक बड़ी सेना तैयार हो गई। दाविद के साथ दूसरे भी शामिल। हजारों सेना की टुकड़ियों की गिनती इस प्रकार है। ये सब दाविद के पास हेब्रोन में आए थे कि उन्हें शाऊल का शासन सौंप दें, जैसा कि यहावे का कहा गया वचन था। ढाल और भालाधारी यहूदिया के हजार सैनिकों की गिनती 6,800 थी। शिमोन से वीर योद्धा 7,100, लेवी से 4,600, अहरोन से शासक यहोयादा और उसके साथ 3,700 सैनिक, सादोक एक वीर योद्धा था, उसी के परिवार से 22 सेनापति पैदा हुए थे। इस समय तक बिन्यामीन से शाऊल के संबंधी 3,000 थे, क्योंकि अब तक शाऊल के प्रति विश्वास योग्य थे। एफ्राइम से अपने पिता के वंश से प्रख्यात योद्धा 20,800, मनश्शे के आधे गोत्र से 18,000, इन्हें साफ साफ कह दिया गया था कि वे आकर दाविद का राजाभिषेक करें। इसाखार से 200 प्रधान थे, जिनके सभी संबंधियों पर उनका अधिकार था। ये वे थे जिन्हें यह एहसास था कि इसराइल के लिए कब क्या करना सबसे सही होगा। जेबुलून से 50,000 वीर योद्धा थे, इनके पास युद्ध के सभी प्रकार के हथियार थे। ये दाविद के प्रति पूरी तरह समर्पित थे, वे चंचल ना थे। नफ्ताली से 37,000 सैनिक थे, जिन पर 1,000 सेनापति थे, लड़ाई के लिए तैयार। दान गोत्र से 28,600, आशेर गोत्र से 40,000 युद्ध के लिए तैयार अनुभवी सैनिक, यर्दन नदी के दूसरी ओर से रियूबेन के गोत्र, गाद के गोत्र और मनश्शे के आधे गोत्र से, और गाद वंश गोत्र को दी गई भूमि के भाग से 1,20,000 सैनिक, जो युद्ध के लिए सभी प्रकार के हथियारों से सजे थे। ये सभी जो वीर योद्धा थे, जो युद्ध व्यूह बनाने में निपुण थे, दाविद को पूरे इसराइल पर राजा बनाने की मंशा को लेकर हेब्रोन आए, और सारा इसराइल भी चाहते थे कि दाविद अपना राजा बने। वहां वे दाविद के साथ 3 दिन रहे। वहां उनकी भोजन की पूरी व्यवस्था थी, क्योंकि यह प्रबंध उनके लिए उनके भाइयों द्वारा किया गया था। इनके अलावा दूर दूर से उनके संबंधी इसाखार, जेबुलून और नफ्ताली प्रदेशों से अपने गधों, ऊँटों, खच्चरों और बैलों पर लादकर भोजन सामग्री, बड़ी मात्रा में आटे से बने भोजन पदार्थ, अंजीर की टिक्कियां, किशमिश के गुच्छे, अंगूर का रस, तेल ले आए। साथ ही बैल और भेड़े भी, क्योंकि इसराइल में आनंद छा चुका था। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 13। संदूक परिवहन का संकट। दाविद ने सहस्त्रपतियों, शतपतियों और हर एक शासक से विचार विमर्श किया। दाविद ने सारी इसराइली सभा को कहा, यदि यह आपको सही लगे, यदि यह यहावे हमारे परमेश्वर की ओर से है, हम हमेशा अपने देशवासियों के लिए, जो सारे इसराइल में बचे रह गए हैं, उन पुरोहितों और लेवियों को जो उनके साथ ऐसे नगरों में हैं जिनमें चरागाह है, यह संदेश भेजे कि वे आकर हमसे मिले। तब हम अपने परमेश्वर के संदूक को यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के शासनकाल में हम परमेश्वर के संदूक से दूर रहे हैं। सारी सभा ऐसा करने के लिए राजी हो गई, क्योंकि यह बात सभी की नजरों में सही थी। इस प्रकार दाविद ने मिस्र देश की शीखोर नदी से लेकर लबो हामात तक के सभी इसराइलियों को इकट्ठा किया कि परमेश्वर के संदूक को किरियत यारीम से लाया जाए। सो दाविद और सारा इसराइल परमेश्वर के संदूक को, जो यहावे की प्रतिष्ठा है, जिस पर यहावे करूबों से ऊपर आसीन है, यहूदिया प्रदेश के बाला यानी किरियत यारीम से लाने को गए। अबीनादाब के घर से एक नई गाड़ी पर परमेश्वर का संदूक ले जाया गया। इस गाड़ी को चलाने वाले थे उज्जा और आहियो। दाविद और सारा इसराइल तरह तरह के बाजों और गीतों के सुरों पर परमेश्वर के सामने पूरे तन मन से आनंदित हो रहे थे। जब वे कीदोन के खलिहान पर पहुंचे, बैल लड़खड़ा गए और उज्जा ने संदूक को थामने के लिए हाथ बढ़ाया। तब उज्जा पर यहावे का क्रोध भड़क उठा यहावे ने उस पर वार किया क्योंकि उसने संदूक की ओर अपना हाथ बढ़ाया था। परमेश्वर के सामने उसकी मृत्यु हो गई। उज्जा पर यहावे के इस क्रोध पर दाविद गुस्सा हो गए। वह स्थान आज तक पेरेस उज्जा कहा जाता है। दाविद उस दिन परमेश्वर से बहुत ही डर गए। वह विचार कर रहे थे, मैं परमेश्वर के संदूक को अपने इधर कैसे ला सकता हूँ। इसलिए दाविद संदूक को दाविद नगर में नहीं ले गए, बल्कि वे संदूक को गात ओबेद एदोम के घर पर ले गए। तब परमेश्वर का संदूक ओबेद एदोम के घर पर उसके परिवार के साथ 3 महीने रहा। ओबेद एदोम के परिवार और उसकी संपत्ति पर यहावे की कृपा दृष्टि बनी रही। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 14। दाविद का बड़ा परिवार। सोर देश के राजा हीराम ने देवदार के पेड़ की लकड़ी, राजमिस्त्री और बढ़ई के साथ अपने दूत भेजे। हीराम की इच्छा थी दाविद के लिए एक घर बनवाना। दाविद को यह साफ निश्चय हो गया था कि यहावे ने उन्हें राजा के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया है, और यह भी कि यहावे की प्रजा इसराइल के लिए उसका राज्य बहुत ही गौरवान्वित हो गया है। यरूशलेम आकर बसने पर दाविद और भी उपपत्नियां और पत्नियां ले आए, और उनके और भी संतान पैदा हुई। यरूशलेम में पैदा उनकी संतान के नाम ये हैं: शमुआ, शोबाब, नाथान, शलोमोन, इबहार, एलिशुआ, एलपेलेत, नोघा, नेफेग, याफिया, एलिश्मा, बियलियादा और एलिफेलेत। फिलिस्तीनियों की पराजय। जब फिलिस्तीनियों को यह मालूम हुआ कि सारे इसराइल के लिए दाविद का राज अभिषेक किया गया है, सभी फिलिस्तीनी दाविद की खोज में निकल पड़े। दाविद को इसका समाचार मिल गया, वह उनसे युद्ध करने निकल पड़े। इस समय फिलिस्तीनी आकर रेफाइम घाटी में फैल गए। दाविद ने परमेश्वर से पूछा, क्या मैं फिलिस्तीनियों पर हमला करूं? क्या आप उन्हें मेरे अधीन कर देंगे? यहावे ने दाविद को उत्तर दिया, हमला करो, मैं उन्हें तुम्हारे अधीन कर दूंगा। दाविद और उसके सैनिकों ने बाल पेराजीम नामक स्थान पर पहुंचे और वहां फिलिस्तीनियों को हरा दिया। वहां दाविद ने यह घोषित किया, परमेश्वर मेरे शत्रुओं पर कुछ ऐसे टूट पड़े जैसे बहुत से जल के बांध को तोड़ देते वक्त का बहाव। इस पर उस स्थान का नाम पड़ गया बाल पेराजीम। फिलिस्तीनी अपने देवता वहीं छोड़कर भागे थे। तब दाविद ने आदेश दिया और वे जला दिए गए। एक बार फिर फिलिस्तीनियों ने उस घाटी में छापा मारा। दाविद ने दोबारा परमेश्वर से पूछा और परमेश्वर ने उन्हें उत्तर दिया, तुम उनका पीछा करते हुए हमला ना करना, बल्कि घूमकर उनके पीछे जाओ और मोखा पेड़ों के सामने से उन पर हमला करो। हमला उस समय सही होगा जब तुम्हें मोखा के पेड़ों के ऊपर से सेना की चहलकदमी सुनाई देने लगे, तब तुम युद्ध शुरू कर देना, क्योंकि उस समय परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे फिलिस्तीनी सेना को मारते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। दाविद ने वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने आदेश दिया था। उन्होंने गिबियोन से लेकर गेजेर तक फिलिस्तीनी सेना को मार गिराया। सभी देशों में दाविद की कीर्ति फैलती चली गई। यहावे ने सभी देशों पर उनका आतंक फैला दिया। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 15। संदूक को यरूशलेम लाया जाना। दाविद ने दाविद नगर में अपने लिए भवन बना लिए। उन्होंने परमेश्वर के संदूक के लिए भी एक जगह तैयार की और उसके लिए शिविर खड़ा किया। तब दाविद ने आदेश दिया, परमेश्वर के संदूक को लेवियों के अलावा और कोई न उठाए, क्योंकि यहावे ने हमेशा के लिए यहावे के संदूक को उठाने के लिए और अपनी सेवा के लिए उन्हें ही चुना है। दाविद ने सारे इसराइल को यरूशलेम में इकट्ठा किया कि यहावे के संदूक को यरूशलेम में उनके द्वारा उसके लिए तैयार किए गए स्थान पर लाया जाए। दाविद ने अहरोन के इन पुत्रों और लेवियों को इकट्ठा किया। कोहात के पुत्रों में से उरियेल जो प्रधान था और उसके 120 रिश्तेदार। मेरारी के पुत्रों में से असाइया जो कि प्रधान था और उसके 220 संबंधी, गेरशोम के पुत्रों में से योएल, जो प्रधान था और उसके 130 संबंधी, एलिजाफान के पुत्रों में से शोमाया, जो प्रधान था और उसके 200 संबंधी, हेब्रोन के पुत्रों में से एलियेल, जो प्रधान था और उसके 80 संबंधी, उज्जियेल के पुत्रों में से अमीनादाब, जो प्रधान था और उसके 112 भाइयों को। तब दाविद ने सादोक और अबियाथर नामक पुरोहित को और उरियेल असाइया, योएल, शेमाया, एलियेल और अमीनादाब नामक लेवियों को बुलवाकर उन्हें संबोधित करते हुए कहा, आप सभी लेवी पितरों के गोत्रों के प्रधान हैं। आप लोग अपने आप को शुद्ध कीजिए, अपने आप को और अपने रिश्तेदारों दोनों को कि आप लोग यहावे इसराइल के परमेश्वर के संदूक को उस जगह पर ले आए जो मैंने उसके लिए तैयार किया है। पहली बार में आप लोगों ने इसको नहीं निभाया था, इसलिए यहावे हमारे परमेश्वर का क्रोध हम पर भड़क गया था। हमने व्यवस्था के अनुसार इसके उठाने के लिए उनकी इच्छा ही मालूम नहीं की थी। तब पुरोहितों और लेवियों ने अपने आप को शुद्ध किया कि वे यहावे इसराइल के परमेश्वर के संदूक को ले आए। इसलिए लेवी वंशजों ने परमेश्वर के संदूक को उसमें लगी बल्लियों के द्वारा उठाया, जैसा मोशे द्वारा आदेश दिया गया था, जैसा यहावे ने मोशे को बताया था। दाविद ने लेवियों के प्रधानों को यह आदेश दे रखा था कि वे अपने गायक संबंधियों को चुने कि वे बाजों के साथ और ऊंची आवाज की झांझ के साथ आनंद में गाएं। इसलिए लेवियों ने इसके लिए इन लोगों को चुना, योएल के पुत्र हेमान और उसके संबंधियों को, बेरेखिया के पुत्र आसफ और मेरारी के पुत्रों में से उनके संबंधियों को, कुशाया के पुत्र एथन को उनके साथ उनके संबंधियों को जो दूसरे पद में थे, जकरिया, बेन, जातसियेल, शेमीरामोत यहीएल, उन्नी, एलियाब, बेनहिया, मासेया, मतीथिया, एलीफेलेहू, मिकनेया, ओबेद एदम और येल को जो द्वारपाल थे। संगीतकार हेमान, आसफ और एथन की जवाबदारी थी कांसे की झांझ को बजाना, जकरिया, आजेल, शेमीरामोत, यहीएल, उन्नी, एलियाब, मासेया और बेनहिया की जवाबदारी थी तंतुवादन पर अलामोत के अनुसार बजाना, किंतु मतीथिया, एलीफेलेहू, मिकनेया, ओबेद एदोम, ये एल और अजरिया की जवाबदारी थी शेमिनीत शैली में तंतुवादन के अनुसार बजाना। लेवियों का प्रधान केनानिया सभी गानों का अधिकारी था। वह संगीत में कुशल था, इसलिए वह निर्देश दिया करता था। बेरेखिया और एलकाना संदूक के लिए ठहराए गए द्वारपाल थे। शेबानियाहू, योशाफत, नेथानेल, आमासाई, जकरिया, बेनाहिया और एलियाजर, ये सभी पुरोहित थे। इनकी जवाबदारी थी परमेश्वर के संदूक के सामने तुरियां बजाना। ओबेद एदोम और यहिया भी संदूक के लिए ठहराए गए द्वारपाल थे। इसलिए बहुत ही आनंद में भरकर दाविद इज़राइल के पुरनिये और सहस्त्रपति ओबेद एदोम के घर से यहावे के संदूक को लाने के लिए गए। उन्होंने 7 बछड़ों और 7 मेढ़ों की बलि चढ़ाई, क्योंकि यहावे का संदूक उठाने वाले लेवियों को परमेश्वर द्वारा दी जा रही सहायता साफ ही थी। इस मौके पर दाविद ने उत्तम उत्तम मलमल का बागा पहना हुआ था, जैसा कि संदूक उठाने वाले लेवियों ने और गायकों और गाने वालों को निर्देश देने वाले केनानिया ने भी। इसके अलावा दाविद मलमल का एफोद भी पहने हुए थे। तब यहावे की वाचा के संदूक को पूरे इसराइल ने जय जयकार करते हुए नरसिंगे, तुरी, झांझों और तंतुवादनों के ऊंचे संगीत की आवाज के साथ लाया गया। जैसे ही यहावे की वाचा का संदूक दाविद नगर में आया, खिड़की से शाऊल की पुत्री मीखल ने खुशी में नृत्य करते राजा दाविद को देखा और मन ही मन वह दाविद को तुच्छ मानने लगी। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 16। शिविर में मंजूषा की प्रतिष्ठा और उसके सामने आराधना। उन्होंने परमेश्वर के संदूक को लाकर उस तंबू के भीतर जिसे दाविद ने उसके लिए विशेष रूप से बनवाया था, उसके निर्धारित स्थान पर स्थापित कर दिया। इसके बाद दाविद ने यहावे को अग्निबलि और मेल बलि चढ़ाई। जब दाविद अग्निबलि और मेल बलि चढ़ा चुके, उन्होंने प्रजा के लिए सेनाओं के यहावे के नाम में आशीर्वाद दिए। उन्होंने इसराइल के हर एक व्यक्ति को, स्त्री पुरुष दोनों को ही, एक एक रोटी, मांस का एक भाग और एक टिक्की किशमिश बटवाई। दाविद ने विशेष लेवियों को यहावे के संदूक के सामने सेवा के लिए ठहरा दिया कि वे यहावे इसराइल के परमेश्वर की दोहाई दे, उनका आभार माने और उनकी स्तुति करते रहे। इनमें आसफ प्रधान था। इसके बाद दूसरे वर्ग में थे जकरिया, येईएल, शेमीरामोत, यहीएल, मतीथिया, एलियाब, बेनाहिया, ओबेद एदोम और येईएल। इनका काम था तंतु वादों को बजाना। आसफ ऊंची आवाज में झांझ भी बजाता था। पुरोहित बेनाहिया और यहाजियेल की जवाबदारी थी परमेश्वर की वाचा के संदूक के सामने लगातार तुरी बजाते रहना। यह पहला मौका था जब दाविद ने आसफ और उसके संबंधियों को चुना कि वे यहावे के लिए धन्यवाद के गीत गाया करें। यहावे के प्रति आभार व्यक्त करो, उनको पुकारो, सभी राष्ट्रों के सामने उनके द्वारा किए कार्यों की घोषणा करो, उनकी प्रशंसा में गाओ, उनका गुणगान करो, उनके सभी अद्भुत कार्यों का वर्णन करो, उनके पवित्र नाम पर गर्व करो, उनके हृदय जो यहावे के खोजी है उल्लसित हो, यहावे और उनकी सामर्थ्य की खोज करो, उनकी उपस्थिति के सतत खोजी बने रहो, उनके द्वारा किए अद्भुत कार्य स्मरण रखो तथा उनके द्वारा हुई अद्भुत बातें एवं निर्णय भी। उनके सेवक इज़राइल के वंश, उनके द्वारा चुने हुए याकोब की संतान, वह यहावे है हमारे परमेश्वर। समस्त पृथ्वी पर उनके द्वारा किया गया न्याय स्पष्ट है, उन्हें अपनी वाचा सदैव स्मरण रहती है। वह आदेश जो उन्होंने हजार पीढ़ियों को दिया, वह वाचा जो उन्होंने अब्राहम के साथ स्थापित की, प्रतिज्ञा की वह शपथ जो उन्होंने यित्साहक से खाई थी, जिसकी पुष्टि उन्होंने याकोब से अधिनियम स्वरूप की, अर्थात इज़राइल से स्थापित अमर यह वाचा, कनान देश तुम्हें मैं प्रदान करूंगा, यह वह भूखंड है जो तुम निज भाग में प्राप्त करोगे। जब परमेश्वर की प्रजा की संख्या अल्प ही थी, वे बहुत ही कम थे और वे उस देश में परदेशी थे, जब वे एक देश से दूसरे देश में भटकते फिर रहे थे, वे एक राज्य में से होकर दूसरे में यात्रा कर रहे थे, परमेश्वर ने किसी भी राष्ट्र को उन्हें दुखित ना करने दिया। उनकी ओर से स्वयं परमेश्वर उन राजाओं को डांटते रहे, मेरे अभिषिक्तों को स्पर्श तक ना करना, मेरे भविष्यवक्ताओं को कोई हानि ना पहुंचे। सारी पृथ्वी यहावे की स्तुति में गाए, हर रोज उनके द्वारा दी गई छुड़ौती की घोषणा की जाए, देशों में उनके प्रताप की चर्चा की जाए और उनके अद्भुत कामों की घोषणा हर जगह, क्योंकि महान है यहावे और सर्वाधिक योग्य है स्तुति के। अनिवार्य है कि उनके ही प्रति सभी देवताओं से अधिक श्रद्धा रखी जाए, क्योंकि अन्य जनताओं के समस्त देवता मात्र प्रतिमाएं ही हैं, किंतु स्वर्ग मंडल के बनाने वाले यहावे हैं। वैभव और ऐश्वर्य उनके चारों ओर है, सामर्थ्य और आनंद उनकी उपस्थिति में बसे हुए हैं। राष्ट्रों के समस्त गोत्रों, यहावे को पहचानो, यहावे को पहचानकर उनके तेज और सामर्थ्य को देखो, यहावे की प्रतिष्ठा के लिए उनका गुणगान करो, उनकी उपस्थिति में भेंट लेकर जाओ, यहावे की वंदना पवित्रता के ऐश्वर्य में की जाए, उनकी उपस्थिति में सारी पृथ्वी में कपकपी दौड़ जाए। यह एक सत्य है कि संसार दृढ़ रूप में स्थिर हो गया है, यह हिल ही नहीं सकता। स्वर्ग आनंदित हो और पृथ्वी मगन, देश देश में यह प्रचार कर दिया जाए, यह यहावे का शासन है। सागर और सभी कुछ जो कुछ उसमें है ऊंची आवाज करे, खेत और जो कुछ उसमें है सब कुछ आनंदित हो। तब बंजर भूमि के पेड़ों से यहावे की स्तुति में जय जयकार के गीत फूट पड़ेंगे, क्योंकि वह पृथ्वी का न्याय करने आ रहे हैं। यहावे का धन्यवाद करो, वे भले हैं, उनकी करुणा सदा की है। तब यह दोहाई दी जाए, हमारे उद्धार करने वाले परमेश्वर हमें छुड़ा लीजिए, हमें इकट्ठा कर देशों से हमें छुड़ा लीजिए, कि हम आपके पवित्र नाम का धन्यवाद करें और आपकी स्तुति ही हमारा गौरव हो। आदि से अनंत काल तक धन्य है यहावे इज़राइल के परमेश्वर। इस पर सारी प्रजा ने कहा, आमेन, और यहावे की स्तुति हो। तब दाविद ने हर दिन की आवश्यकता के अनुसार यहावे के संदूक के सामने नियमित सेवा के लिए आसफ और उसके संबंधियों को जवाबदारी सौंप दी। इनके अलावा यही जवाबदारी ओबेद एदोम और उसके 68 रिश्तेदारों की भी थी। यदूथून का पुत्र ओबेद एदोम भी होसाहा के साथ वहां द्वारपाल था। दाविद ने गिबियोन के पवित्र स्थान पर पुरोहित सादोक और उसके संबंधी पुरोहितों को यहावे के मिलन वाले तंबू की सेवा के लिए ठहरा दिया, कि वे वहां होमबलि वेदी पर सुबह और शाम नियमित रूप से यहावे को बलि चढ़ाए, ठीक जैसा यहावे की व्यवस्था में कहा गया है, जिसका आदेश इज़राइल को दिया गया है। इनके साथ हेमान और यदूथून भी थे, और शेष वे थे जो इसके लिए अलग किए गए थे, जिन्हें उनके नाम से चुना गया था कि वे यहावे के प्रति उनके अपार प्रेम के लिए धन्यवाद करते रहे, जो सदा के लिए है। हेमान और यदूथून का एक और काम भी था, तुरियों, झांझों और अन्य वाद्य यंत्रों पर उस समय बजाना जब परमेश्वर के लिए गीत गाए जा रहे होते थे। यदूथून के पुत्र द्वारपाल थे, तब सभी वहां से निकलकर अपने अपने घर को लौट गए। दाविद भी अपने घर को चले गए कि अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद दे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 17। दाविद के साथ परमेश्वर की वाचा। जब दाविद अपने लिए बनाए गए भवन में रहने लगे, तब उन्होंने भविष्यद्वक्ता नाथान से कहा, देखिए, मैं तो देवदार से बने भवन में रह रहा हूं, मगर यहावे की वाचा का संदूक सिर्फ पर्दों के अंदर रखा हुआ है। नाथान ने दाविद से कहा, परमेश्वर आपके साथ है, आप वह सब कर सकते हैं जो आपके हृदय में आ रहा है। उसी रात परमेश्वर का वचन नाथान को प्राप्त हुआ, मेरे सेवक दाविद से जाकर यह कहना, यहावे का कथन है, तुम वह नहीं हो जो मेरे रहने के लिए भवन बनाएगा, क्योंकि इज़राइल के निकाले जाने से लेकर अब तक मैं भवन में नहीं रहा हूँ। मैं एक तंबू से दूसरे तंबू में और एक निवास से दूसरे में रहता आया हूँ। सारी इज़राइली प्रजा के साथ एक स्थान से दूसरे तक जाते हुए क्या मैंने इज़राइली प्रजा पर मेरे ही द्वारा चरवाहे के पद पर रखे गए किसी भी न्याय अध्यक्ष से यह पूछा है, तुमने मेरे लिए देवदार की लकड़ी का भवन क्यों नहीं बनाया? तब तुम्हें अब मेरे सेवक दाविद से यह कहना होगा, सेनाओं के यहावे का वचन है, मैंने ही तुम्हें चरागाह से भेड़ों के चरवाहे के पद पर इसलिए चुना कि तुम्हें अपनी प्रजा इज़राइल का शासक बनाऊं। तुम जहां कहीं गए मैं तुम्हारे साथ था, तुम्हारे सामने से तुम्हारे सारे शत्रुओं को मैंने मार गिराया। मैं तुम्हारे नाम को ऐसा करूंगा जैसा पृथ्वी पर महान लोगों का होता है। अपनी प्रजा इज़राइल के लिए मैं एक जगह तय करूंगा, मैं उन्हें वहां बसाऊंगा कि वे वहां अपने ही घरों में रह सके और उन्हें वहां से चलाया ना जाए, और कोई भी दुष्ट व्यक्ति उन्हें पहले के समान परेशान ना करे। हाँ, उस समय से शुरू करके जब मैंने अपनी प्रजा इज़राइल पर न्याय अध्यक्षों को शासक बनाया था, मैं तुम्हारे सभी शत्रुओं को दबा दूंगा। इसके अलावा मैं यह घोषित कर रहा हूं, यहावे तुम्हें एक राजवंश के रूप में बसाएंगे। जब तुम मृत्यु या पूरी उम्र में अपने पूर्वजों में जा मिलोगे, मैं तुम्हारे ही वंशज को तुम्हारे बाद खड़ा करूंगा, वह तुम्हारा ही अपना पुत्र होगा, मैं उसके राज्य को स्थिरता दूंगा, मेरे लिए भवन को वही बनाएगा, मैं उसका सिंहासन हमेशा के लिए स्थिर करूंगा, उसके लिए मैं पिता हो जाऊंगा और मेरे लिए वह पुत्र होगा, उस पर से मेरा अपार प्रेम कभी ना हटेगा जैसा मैंने तुमसे पहले के लोगों से हटा लिया था। मैं उसे हमेशा के लिए अपने घर में अपने राज्य में प्रतिष्ठित करूंगा, उसका सिंहासन हमेशा के लिए अटल किया जाएगा। नाथान ने अपने दर्शन और यहावे के संदेश के अनुसार दाविद को सब कुछ बता दिया। इसके उत्तर में दाविद की प्रार्थना। तब राजा दाविद जाकर यहावे के सामने बैठ गए। वहां उनके हृदय से निकले वचन ये थे, यहावे परमेश्वर, कौन हूं मैं और क्या है मेरे परिवार का पद कि आप मुझे इस जगह तक ले आए हैं। परमेश्वर, आपकी दृष्टि में यह छोटा सा काम था। इतना ही नहीं, अपने अपने सेवक के परिवार के बहुत आगे के भविष्य के बारे में भी बता दिया है। यहावे परमेश्वर, आपने मुझे ऊंचे पद के व्यक्ति का स्थान दिया है। अपने सेवक को आपने जो सम्मान दिया है उसके संबंध में इसके बाद दाविद क्या ही कह सकता है। आप अपने सेवक को जानते हैं। यहावे, आपने अपने सेवक की भलाई में और स्वयं अपने हृदय की इच्छा के अनुसार आपने ये सारे अद्भुत काम किए हैं कि इनमें आपकी महानता प्रकट हो। जो कुछ हमने अपने कानों से सुना है उसके अनुसार यहावे, कोई भी नहीं है आपके समान और ना कोई ईश्वर आपके बराबर आ सका है। कौन है आपकी प्रजा इज़राइल के समान, जो पृथ्वी पर एकमात्र ऐसा देश है जिसे अपनी प्रजा बनाने के लिए स्वयं परमेश्वर उसे छुड़ाने के लिए आगे आए। आपने जिस प्रजा को मिस्र देश से छुड़ाया था उसके सामने से जनताओं को निकाल के अद्भुत और भयानक कामों को दिखाकर आपने अपनी कीर्ति स्थापित की है। आपने अपने ही लिए अपनी प्रजा इज़राइल को ऐसे बनाया है कि वे सदा सर्वदा के लिए आपकी प्रजा रहे, और तब यहावे आप उनके परमेश्वर हो गए। अब यहावे, अपने सेवक और उसके परिवार के संबंध में आपने जो कुछ प्रकट किया है हमेशा के लिए अटल हो और आपके वचन के अनुसार ही होता रहे। इस विषय में यही कहा जाए, इज़राइल के परमेश्वर सेनाओं के यहावे ही इज़राइल के परमेश्वर है, और आपके सेवक दाविद का परिवार आपके सामने स्थिर हो जाएगा। क्योंकि मेरे परमेश्वर, आपने अपने सेवक पर यह प्रकट किया है कि आप उसके लिए घर बनाएंगे। यही कारण है कि आपके सेवक को आपके सामने प्रार्थना करने की हिम्मत मिली है। यहावे परमेश्वर आप हैं, और आपने अपने सेवक से यह भलाई की प्रतिज्ञा की है, और अब आपकी खुशी इसमें है कि आप अपने सेवक के परिवार पर कृपा दृष्टि करें कि यह आपके सामने हमेशा अटल रहे। क्योंकि यहावे, जब आपने आशीष दी है तो यह आशीष हमेशा के लिए ही है। इतिहास की पहली पुस्तक, अध्याय 18। दाविद का राज्य मजबूत होता गया। कुछ समय बाद दाविद ने फिलिस्तीनियों को युद्ध में हराया और फिलिस्तीनियों के कब्जे के गात और उसके आसपास के गांव उनके अधिकार से छीन लिए। दाविद ने मोआब देश को भी हराया और मोआब के लोग दाविद के सेवक हो गए। वे दाविद को कर देने लगे। दाविद ने जोबा के राजा हाददेजर को भी हामात तक जाकर हराया, क्योंकि हाददेजर फरात नदी के तट पर एक स्मारक बनाने की योजना बना रहा था। दाविद ने हाददेजर से 1,000 रथ, 7,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक छीन लिए और रथों के घोड़ों के पैरों की प्रमुख नस काट दी, किंतु 100 रथों में इस्तेमाल के लिए पर्याप्त घोड़ों को छोड़ दिया। जब जोबा के राजा हाददेजर की सहायता के लिए दमिश्क से आरामी वहां आए, दाविद ने 22,000 आरामियों को मार दिया। दाविद ने दमिश्क के आरामी सैनिकों के बीच एक रक्षक सेना ठहरा दी। आरामी दाविद के सेवक बन गए और उन्हें कर देने लगे। दाविद जहां कहीं गए उन्हें यहावे की सहायता मिलती रही। हाददेजर के सेवकों द्वारा ले जाई गई सोने की ढालों को दाविद ने लाकर यरूशलेम में रख दिया। इसके अलावा दाविद हाददेजर के नगर तीभा और कून से भारी मात्रा में कांसा ले आए, जिनसे शलोमोन ने पानी रखने के बर्तन, खम्भे और दूसरे बर्तन बनाए थे। जब हामात के राजा तोव ने यह सुना कि दाविद ने जोबा के राजा हाददेजर की संपूर्ण सेना को हरा दिया है, उसने अपने पुत्र हादरोम को राजा दाविद से भेंट करने के लिए भेजा कि वह राजा को बधाई दे सके, क्योंकि दाविद ने हादेजर से युद्ध कर उसे हरा दिया था। हादेजर तोव से युद्ध करता रहा था। राजा तोव ने अपने पुत्र के साथ सोने, चांदी और कांसे की तरह तरह की वस्तुएं भेजी थी। राजा दाविद ने इन सभी वस्तुओं को उन वस्तुओं के साथ यहावे को समर्पित कर दी जो वह उन सभी पराजित देशों यानी एदोम, मोआब, अम्मोन के वंशजों, फिलिस्तीनियों और अमालेक से लेकर आए थे। इसके अलावा जेरुया के पुत्र अभिशाई ने नमक की घाटी में 18,000 सैनिकों की एदोमी सेना को हराया। दाविद ने एदोम में गढ़ रक्षक सेना बना दी। सभी एदोम वासी दाविद के सेवक हो गए। दाविद जहां कहीं हमला करते थे, यहावे ने उन्हें सफलता प्रदान की। दाविद के अधिकारी वर्ग। दाविद सारे इसराइल के शासक थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए न्याय और सच्चाई की व्यवस्था की थी। जेरुया के पुत्र योआब सेना पर अधीशक था और अहिलूद के पुत्र यहोशाफात लेखापाल था। अहितूब के पुत्र सादोक और अबियातर के पुत्र अहीमेलेक पुरोहित थे और शावसा उनका सचिव था। यहोयादा का पुत्र बेनाया केरेथी और पेलेथी नगरवासियों पर मुख्य अधिकारी बनाया गया था। दाविद के पुत्र दाविद के साथ उच्च अधिकारी थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 19। अमोनियों और अशूरियों की पराजय। अम्मोन के वंशजों के राजा नाहाश की मृत्यु के बाद उसका पुत्र उसके स्थान पर राजा हो गया। दाविद ने सोचा, मैं नाहाश के पुत्र हानून पर अपनी दया बनाकर रखूंगा क्योंकि उसका पिता मुझ पर कृपालु था। इसलिए दाविद ने उसे उसके पिता की मृत्यु के संबंध में सांत्वना देने के लिए अपने दूत भेजे। दाविद के दूत अम्मोन के वंशजों के नगर में राजा हानून को सांत्वना देने पहुंचे, किंतु अम्मोन के वंशजों के शासकों ने हानून से कहा, क्या आप वास्तव में यह मानते हैं कि इन दूतों को आपको सांत्वना देने के लिए भेजते हुए दाविद ने आपके पिता का सम्मान करने का विचार किया है? जरा सोचिए, क्या उसके ये सेवक आपके पास जासूसी करके नाश करने के लक्ष्य से हमारे देश का भेद लेने तो नहीं आए हैं? तब हानून ने दाविद के सेवकों को पकड़कर उनके बाल और दाढ़ी मूंड दी और उनके वस्त्रों को बीच में नितंबों तक काट दिया और उन्हें लौट जाने दिया। कुछ लोगों ने जाकर इसकी सूचना दाविद को दे दी। राजा ने कुछ दूतों को उस सुझाव के साथ बुलवा लिया, आकर यरीखो में उस समय तक ठहरे रहना जब तक तुम्हारी दाढ़ी बढ़ न जाए, तब तुम यहां लौट सकते हो, क्योंकि वे इस समय बहुत ही शर्म महसूस कर रहे थे। जब अम्मोन के वंशजों ने यह पाया कि उन्होंने स्वयं को दाविद के सामने बहुत ही घृणित बना लिया है। हानून और अम्मोन के वंशजों ने लगभग 35,000 किलो चांदी देकर मेसोपोतामिया, आराम माखा और जोबा से घुड़सवार और रथ किराए पर ले लिए। इसके द्वारा उन्होंने 32,000 रथ किराए पर ले लिए। माखा के राजा ने अपने सैनिकों के साथ आकर मेदेबा में शिविर डाल दिए। अम्मोन के वंशजों ने अपने नगरों से इकट्ठा होकर युद्ध के लिए मोर्चा बांधा। जब दाविद को इसका समाचार प्राप्त हुआ, उन्होंने योआब के साथ वीर योद्धाओं की सारी सेना वहां भेज दी। अम्मोनियों ने आकर नगर फाटक पर मोर्चा बना लिया जो राजा इस युद्ध में मिले हुए थे। वे इनसे अलग मैदान में ही ठहरे हुए थे। जब योआब ने यह देखा कि उनके विरुद्ध युद्ध छिड़ चुका है, सामने से और पीछे से भी उन्होंने इसराइल के सर्वोत्तम योद्धा अलग किए और उन्हें आरामियों का सामना करने के लिए चुन दिया। शेष सैनिकों को योआब ने अपने भाई अभिशाई के नेतृत्व में छोड़ दिया कि वे अमोनियों का सामना करें। योआब का आदेश था, यदि तुम्हें यह लगे कि आरामी मुझ पर हावी हो रहे हैं, तब तुम मेरी रक्षा के लिए आ जाना, मगर यदि अमोनी तुम पर प्रबल होने लगे, तब मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आ जाऊंगा। साहस बनाए रखो, हम अपने परमेश्वर के नगरों के लिए और अपने देशवासियों के लिए साहस का प्रदर्शन करें कि यहावे वह कर सके जो उनकी दृष्टि में सही है। योआब और उनके साथ के सैनिकों ने अश्शूरियों पर हमला किया और अरामी उनके सामने से भाग खड़े हुए। जब अमोनियों ने यह देखा कि अरामी मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, वे भी योआब के भाई अभिशाई के सामने से भागने लगे और नगर के भीतर जा छिपे। योआब यरूशलेम लौट गया। जब अश्शूरियों ने यह देखा कि उन्हें इसराइल से हार का सामना करना पड़ा है, तब उन्होंने दूत भेजकर फरात नदी के पार से और भी सेना की विनती की। हाददेजर की इस सेना का प्रधान था शोफक। जब दाविद को इसकी सूचना दी गई, वह सारी इसराइली सेना को इकट्ठा कर यर्दन के पार चले गए और उन्होंने अरामी सेना के विरुद्ध मोर्चा बांधा। दोनों में युद्ध छिड़ गया। अरामी इसराइलियों के सामने पीठ दिखाकर भागने लगे। दाविद ने अरामी सेना के 700 रथ सैनिक, 40,000 घुड़सवार मार गिराए और उनकी सेना के आदेशक शोफक का वध कर दिया। जब हाददेजर के अधीन सभी जागीरदारों ने यह देखा कि वे इसराइल द्वारा हरा दिया गया है, उन्होंने दाविद से संधि कर ली और उनके अधीन हो गए। अब अरामी अम्मोन वंशजों की सहायता के लिए तैयार ना थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 20। रब्बा पर अधिकार किया जाना। यह घटना वसंत के मौसम की है, जब राजा युद्ध के लिए निकल पड़ते थे। सेना की अगुवाई योआब कर रहा था। उन्होंने अम्मोन के वंशजों के देश को नाश कर दिया था। उन्होंने रब्बा नामक नगर पर घेरा डाल दिया, मगर योआब ने रब्बा पर हमला किया और उसे नाश कर दिया, मगर इस मौके पर दाविद यरूशलेम में ही रहे। जब दाविद रब्बा पहुंचे, तब दाविद ने उनके राजा के सिर से मुकुट उतार लिया। इस मुकुट का कुल भार लगभग 35 किलो पाया गया। इस मुकुट में रत्न भी जड़े हुए थे। यह मुकुट दाविद के सिर पर रख दिया गया। दाविद उस नगर से भारी मात्रा में लूटा हुआ सामान ले आए। दाविद उन नगरवासियों को नगर से बाहर निकाल लाए और उन्हें आरियों, गैतियों और कुल्हाड़ियों से होने वाले कामों में लगा दिया। दाविद ने अम्मोनियों के सभी नगरों के साथ यही किया। इसके बाद दाविद और सभी लोग यरूशलेम लौट गए। फिलिस्तीनियों के विरुद्ध विलक्षण कार्य। इसके बाद गेजेर में फिलिस्तीनियों के विरुद्ध युद्ध छिड़ गया। इसमें हुशाती सिब्बेकाई ने दैत्यों के वंशज सिपाई को मार गिराया, जिससे फिलिस्तीनी दाविद के अधीन हो गए। एक बार फिर फिलिस्तीनियों से युद्ध छिड़ गया। याइर के पुत्र एल हानन ने गात गोलियत के भाई लहमी को मार डाला। लहमी के भाले की छड़ बुनकर के छड़ के बराबर थी। तब एक बार फिर गात में युद्ध छिड़ गया। वहां एक बहुत ही विशाल डीलडोल का व्यक्ति था, जिसके हाथों और पांव में 6-6 उंगलियां थीं, पूरी 24। वह भी दानवों का ही वंशज था। जब उसने इसराइल पर व्यंग्य बाण छोड़ने शुरू किए, दाविद के भाई शीमिया के पुत्र योनातन ने उसको मार दिया। ये सभी गाथ नगर में दानवों का ही वंशज था। वे दाविद और उनके सेवकों द्वारा मार गिराए गए। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 21। जनगणना के कारण महामारी। शैतान इसराइल के विरुद्ध सक्रिय हुआ और उसने दाविद को इसराइल की गिनती के लिए उकसाया। दाविद ने सेनापति योआब को आदेश दिया, जाकर बेशरबा से लेकर दान तक इसराइल की गिनती करो और मुझे पूरा ब्यौरा दो कि मुझे लोगों की गिनती मालूम हो सके। मगर योआब ने मना किया, आज प्रजा की जो गिनती है, यहावे उसे 100 गुना बढ़ाए। महाराज मेरे स्वामी, क्या उनमें से हर एक मेरे स्वामी का सेवक नहीं है? तब मेरे स्वामी को इसकी क्या जरूरत है? यह क्यों इसराइल के दोष का कारण बने? मगर राजा को योआब की सलाह पसंद नहीं आई, इसलिए योआब इस काम के लिए निकला। वह पूरे इसराइल में घूमा और काम पूरा कर यरूशलेम लौट आया। योआब ने दाविद को लोगों की गिनती का जोड़ सुनाया। पूरे इसराइल में 11,00,000 और यहूदिया में 4,70,000 तलवार चलाने वाले व्यक्ति थे। इनमें योआब ने लेवी और बिन्यामीन वंश की गिनती नहीं की थी, क्योंकि योआब की नज़र में राजा का यह आदेश गलत था। परमेश्वर दाविद के इस काम से नाराज हुए इसलिए उन्होंने इसराइल पर वार किया। दाविद ने परमेश्वर से कहा, इस काम को करके मैंने घोर पाप किया है, मगर अब कृपा करके अपने सेवक का अपराध दूर कर दीजिए, यह मेरी घोर मूर्खता थी। यहावे ने दाविद के दर्शी गाद को यह आदेश दिया, जाओ और दाविद से यह कहो, यहावे का यह संदेश है, मैं तुम्हारे सामने तीन विकल्प प्रस्तुत कर रहा हूँ, इनमें से तुम एक चुन लो कि मैं उसे तुम पर इस्तेमाल कर सकूं। तब गाद ने दाविद के सामने जाकर उनसे कहा, यह यहावे का संदेश है, अपने लिए चुन लो, 3 साल के लिए अकाल या 3 महीने तक तुम्हारे शत्रुओं द्वारा मार, जब उनकी तलवार नाश करती रहेगी, या 3 दिन पूरे देश में यहावे की तलवार की महामारी, जब यहावे का दूत सारे इसराइल देश की सीमाओं के भीतर महाविनाश करता जाएगा। इसलिए अब विचार कीजिए कि मैं लौटकर उन्हें क्या उत्तर दूं जिन्होंने मुझे यहां भेजा है। दाविद ने गाद से कहा, मैं घोर संकट में हूं, कृपया मुझे यहावे के हाथ में पड़ जाने दीजिए, क्योंकि बहुत बड़ी है उनकी दया, बस मुझे किसी मनुष्य के हाथ में ना पड़ने दीजिए। तब यहावे ने इसराइल पर महामारी भेजी, इसराइल के 70,000 लोगों की मृत्यु हो गई। यरूशलेम के विनाश के लिए परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत भेजा, मगर जब यह दूत यरूशलेम को नाश करने पर ही था, यहावे ने इस पर दृष्टि की और महामारी देख वह दुखी हो गए। उन्होंने उस विनाश करने वाले स्वर्गदूत को आदेश दिया, बहुत हुआ, आराम दो अपने हाथ को। यहावे का दूत यबूसी ओर्नन के खलियान के पास खड़ा हुआ था। दाविद ने आंखें उठाई तो देखा कि यहावे का दूत पृथ्वी और आकाश के बीच खड़ा हुआ था। उसके हाथ में जो तलवार थी वह यरूशलेम की ओर बढ़ी हुई थी। यह देख दाविद और उनके साथ के प्राचीन, जिन्होंने टाट पहन रखी थी, मुंह के बल दंडवत हो गए। दाविद ने परमेश्वर से विनती की, क्या जनता की गिनती का आदेश मेरा ही ना था? पाप मैंने किया है, बड़ा बुरा काम हुआ है मुझसे, इन भेड़ों पर विचार कीजिए, क्या गलत किया है इन्होंने? यहावे मेरे परमेश्वर दया करे, आपका हाथ मुझ पर और मेरे पिता के परिवार पर उठे, मगर आपकी प्रजा पर नहीं कि उन पर महामारी की मार हो। दाविद द्वारा बनाई गई वेदी। इस अवसर पर यहावे के दूत ने गाद को आदेश दिया कि वह दाविद से कहे कि दाविद जाकर यहावे के लिए यबूसी ओर्नन के खलिहान पर एक वेदी बनाए। तब यहावे द्वारा गाद को दिए गए आदेश के अनुसार दाविद वहां गए। ओर्नन जैसे ही मुड़ा, उसे स्वर्गदूत दिखाई दिया। यह देखते ही ओर्नन के साथ उसके जो 4 पुत्र वहां थे छिप गए। इस समय ओर्नन गेहूं की दावनी भूसी निकालना कर रहा था। जब दाविद ओर्नन के निकट पहुंचे, ओर्नन की दृष्टि दाविद पर पड़ी। वह खलिहान छोड़कर दाविद के सामने जा गिरा और दंडवत हो उन्हें प्रणाम किया। दाविद ने ओर्नन से कहा, मुझे यह खलिहान दे दो कि मैं इस पर यहावे के लिए एक वेदी बना सकूं। तुम यह मुझे इसके पूरे मूल्य पर दे दो कि यहावे द्वारा मेरी प्रजा पर भेजी यह महामारी शांत की जा सके। ओर्नन ने दाविद से कहा, आप इसे ले लीजिए महाराज, मेरे स्वामी को जो कुछ सही लगे वही करे। देखिए, मैं तो आपको होम बलि के लिए बैल, लकड़ी के लिए दमरी का औजार और अन्न बलि के लिए गेहूं दिए देता हूं, यह सब आप मुझसे ले लें। किंतु राजा दाविद ने ओर्नन को उत्तर दिया, नहीं, मैं यह सब पूरा दाम चुकता करके ही लूंगा। यहावे को चढ़ाने के लिए जो कुछ तुम्हारा है उसे मैं नहीं ले सकता। मैं वह होमबलि नहीं चढ़ाऊंगा जिसका दाम मैंने चुकता नहीं किया है। इसलिए दाविद ने ओर्नन को खलियान के लिए 7 किलो सोना चुकाया। तब दाविद ने वहां यहावे के लिए एक वेदी बनाई और उस पर होमबलि और मेल बलि भेंट की। दाविद ने यहावे की दोहाई दी और यहावे ने इसका उत्तर स्वर्ग से होमबलि वेदी पर आग भेजकर दिया। यहावे ने स्वर्गदूत को आदेश दिया और उसने तलवार को म्यान में रख लिया। उस अवसर पर जब दाविद ने यह देखा कि यहावे ने उन्हें यबूसी ओर्नन के खलियान पर उत्तर दिया है, उन्होंने उसी स्थान पर बलि चढ़ा दी, क्योंकि बंजर भूमि में मोशे द्वारा बनाए यहावे के मिलन वाले तंबू और होमबलि वेदी इस समय गिबियोन के आराधना की जगह पर ही थी। दाविद परमेश्वर से पूछताछ करने उस वेदी के सामने ना जा सके थे, क्योंकि वह यहावे के दूत की तलवार से बहुत ही डरे हुए थे। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 22। तब दाविद ने कहा, यह यहावे परमेश्वर का भवन है और इज़राइल के लिए यही होमबलि वेदी है। दाविद द्वारा मंदिर निर्माण की तैयारी। दाविद ने आदेश दिया कि इज़राइल देश में बसे विदेशियों को इकट्ठा किया जाए। उन्होंने परमेश्वर के भवन बनाने के लिए पत्थरों को सवारने के लिए शिल्पी चुने। दाविद ने भारी मात्रा में लोहा तैयार किया कि इससे तरह तरह के दरवाजों के लिए कीले और शिकंजे तैयार किए जा सके। उन्होंने इतना कांसा इकट्ठा कर लिया जिसे नापना तोलना मुश्किल हो गया था। अनगिनत हो गई थी देवदार के पेड़ों की बल्लियां, क्योंकि सीदोन और सोरवासी दाविद के लिए बड़ी भारी मात्रा में देवदार की बल्लियां ले आए थे। दाविद सोच रहे थे, यहावे के लिए जो भवन बनाया जाना है उसके लिए जरूरी है कि वह बहुत ही भव्य होगा। वह ऐसा शोभेमान होगा कि देशों तक उसका यश पहुंच जाएगा। जबकि मेरा पुत्र शलोमोन कम उम्र का और कम अनुभव का है, इसलिए मैं इसी समय इसकी तैयारी शुरू किए देता हूँ। सो अपनी मृत्यु के पहले ही दाविद ने बड़ी मात्रा में भवन बनाने का सामान इकट्ठा कर लिया। तब दाविद ने अपने पुत्र शलोमोन को बुलवाया और उसे यहावे इज़राइल के परमेश्वर के सम्मान में एक भवन को बनाने की जवाबदारी सौंप दी। शलोमोन से दाविद ने कहा, यहावे मेरे परमेश्वर के सम्मान में एक भवन को बनाने की योजना मेरी थी, मगर मुझे इस बारे में यहावे का यह संदेश प्राप्त हुआ, तुमने बहुतों को मारा है, तुमने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी है, मेरे सम्मान में भवन को तुम नहीं बनवाओगे। मेरे देखते हुए तुमने भूमि पर बहुत खून बहाया है। तुम देखना, तुम्हें एक पुत्र पैदा होगा, वह एक शांत व्यक्ति होगा, उसे मैं उसके चारों ओर के सभी शत्रुओं से शांति दूंगा, क्योंकि उसका नाम शलोमोन होगा। उसके शासनकाल में मैं इज़राइल को शांति और आराम दूंगा। मेरे सम्मान में भवन को वही बनाएगा, वह मेरा पुत्र होगा और मैं उसका पिता। इज़राइल में मैं उसका राज सिंहासन हमेशा के लिए स्थायी कर दूंगा। इसलिए मेरे पुत्र यहावे तुम्हारे साथ साथ बने रहे कि तुम सफल हो जाओ और यहावे तुम्हारे परमेश्वर का भवन ठीक वैसे ही बनवाओ जैसा उन्होंने तुम्हारे बारे में कहा है। यहावे ही तुम्हें सूझबूझ, समझ और इज़राइल पर अधिकार दे कि तुम यहावे अपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर सको। यहावे ने मोशे के द्वारा जो व्यवस्था और नियम दिए हैं, तुम यदि उनका पालन सावधानी से करोगे, तुम फलवंत हो जाओगे, सक्षम साबित हो, दृढ़ बनो, तुम में ना तो झिझक हो और ना ही तुम्हारा मन कच्चा हो। तुम देख ही रहे हो कि मैंने बड़ी मेहनत से 35 लाख किलो सोना, 3.5 करोड़ किलो चांदी और अपार कांसा और लोहा, जिन्हें मापना असंभव है, यहावे के भवन को बनाने के लिए तैयार कर रखा है। ये सभी बड़ी मात्रा में इकट्ठा किए गए हैं। मैंने लकड़ी और चट्टाने भी तैयार कर रखी है। जरूरत पड़ने पर तुम भी और सामान ला सकते हो। तुम्हारे लिए अनेक कर्मचारी हैं, पत्थर का काम करने वाले शिल्पी, भवन बनाने वाले कर्मी जो पत्थर का काम जानते हैं, लकड़ी के शिल्पी और वे सभी व्यक्ति जो हर एक काम में निपुण हैं। सोना, चांदी, कांसा और लोहा अपार मात्रा में है। उठो और काम शुरू कर दो, यहावे तुम्हारे साथ होंगे। दाविद ने इज़राइल के सभी अगुओं को अपने पुत्र शलोमोन की सहायता के लिए यह आदेश दिया। आपको यह एहसास तो है कि यहावे आपके परमेश्वर आपके साथ है और उन्होंने आपको हर तरह से शांति दी है, क्योंकि उन्होंने इस देश के मूल निवासियों को मेरे अधीन कर दिया है, जिससे पूरा देश यहावे और उनकी प्रजा के सामने दबाया जा चुका है। अब यहावे अपने परमेश्वर की खोज करने का संकल्प पूरे हृदय और पूरे प्राण से कीजिए। इसलिए उठिए, यहावे परमेश्वर के भवन को बनाने में जुट जाइए कि आप यहावे की वाचा के संदूक और परमेश्वर के पवित्र बर्तन उस भवन में ला सके जो यहावे के आदर में बनाया जाने पर है। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 23। लेवियों के कर्तव्य। जब दाविद बूढ़े हो गए, उन्होंने अपने पुत्र शलोमोन को इज़राइल पर राजा ठहरा दिया। उन्होंने इज़राइल के सभी अगुओं को पुरोहितों और लेवियों के साथ इकट्ठा किया। 30 साल और 30 साल से ज्यादा उम्र के लेवियों की गिनती की गई। गिनती में पुरुषों की कुल संख्या थी 38,000। दाविद ने आदेश दिया, इनमें से 24,000 लोगों की जवाबदारी है यहावे के भवन को बनाने के काम की अगुवाई करना, और 6,000 का काम है प्रशासन और न्याय करना, और 4,000 द्वारपाल, और बाकी 4,000 यहावे की स्तुति जो संगीत वाद्यंत्र मैंने प्रदान किए हैं उन पर करते रहेंगे। दाविद ने लेवी के वंश के अनुसार उन्हें गेरशोन, कोहात और मेरारी दलों में बांट दिया था। गेरशोन के वंशज। गेरशोन के वंशजों में से थे लादान और शिमेई। लादान के पुत्र थे जेठा यहियेल और जेथाम और योएल, कुल 3। शिमेई के पुत्र शलोमोत, हाजियल और हारान, कुल 3। लादान के घराने के प्रधान थे शिमेई के पुत्र थे याहात, जीजा, येउशोर, बेरिया। ये चारों शिमेई के पुत्र थे। याहात जेठा था और जीजा छोटा, मगर येउश और बेरिया के बहुत पुत्र ना हुए, इसलिए उनकी गिनती एक ही घराने में की गई। कोहात वंशज। कोहात के 4 पुत्र थे, अमराम, इजहार, हेब्रोन और उज्जियल। अमराम के पुत्र थे अहरोन और मोशे। अहरोन को अलग रखा गया था कि वह अति पवित्र वस्तुएं चढ़ाया करे, कि वह और उनके पुत्र हमेशा यहावे के सामने बलि चढ़ाया करे, उनकी सेवा करे और हमेशा उनके नाम में आशीर्वाद दिया करे। मगर परमेश्वर के जन मोशे के संबंध में स्थिति यह थी कि उनके पुत्रों की गिनती लेवियों के वंश में की गई। मोशे के पुत्र थे गेरशोम और एलियाजर। गेरशोम का पुत्र शूबेल जो प्रधान था, एलियाजर का पुत्र रेहाबिया जो प्रधान था। एलियाजर की दूसरी कोई संतान ना थी, हाँ रेहाबिया की अनेक संतान पैदा हुई। इजहार का पुत्र था शेलोमीत जो प्रधान था। हेब्रोन के पुत्र थे पहला येरिया, दूसरा अमरिया, तीसरा यहाजियेल और चौथा येकामियम। उज्जियेल के पुत्र थे पहला मीका और दूसरा इशिया। मेरारी वंशज। मेरारी के पुत्र थे महाली और मूशी। महाली के पुत्र थे एलियाजर और कीश। एलियाजर की मृत्यु बिना किसी पुत्र के हो गई, हाँ उसके पुत्रियां जरूर हुई, इसलिए उनके रिश्तेदारों यानी कीश के पुत्रों ने उनसे विवाह कर लिया। मूशी के 3 पुत्र हुए, महाली, एदर और येरेमोत। कुलों के लेखों के अनुसार लेवी के पुत्र इस प्रकार थे। ये उन घरानों के प्रधान थे जिनके नाम गिनती में लिखे गए थे, जिनका काम था यहावे के भवन में सेवा करना। इनकी उम्र 20 साल और इससे ऊपर की होती थी। दाविद का विचार था, यहावे इज़राइल के परमेश्वर ने अपनी प्रजा को सुरक्षा और शांति दी है, अब हमेशा के लिए उनका रहना यरूशलेम में हो गया है। यह भी सच है कि अब वह स्थिति नहीं आएगी जब लेवियों को मिलन वाले तंबू और इसमें की जा रही सेवा से संबंधित बर्तन इधर उधर करने होंगे, क्योंकि दाविद के पिछले आदेश के अनुसार 20 साल और इससे ऊपर के लेवियों का नाम लिखा गया था। उनका काम था अहरोन के पुत्रों की यहावे के भवन के विभिन्न कामों में सहायता करना, आंगन की देखरेख में, कमरों की देखरेख में, पवित्र बर्तनों और वस्तुओं की साफ सफाई का ध्यान रखने में, और परमेश्वर के भवन से संबंधित विभिन्न कामों में उनकी सहायता करना। इनके अलावा उनकी जवाबदारी भेंट की रोटियां, अनबली के मैदे, खमीर रहित पपड़ियां, गोल रोटी की टिकियां, इन सब का विशेष ध्यान रखना सबको तोलना और मिश्रण तैयार करना। उनका काम था कि वे सुबह और शाम खड़े रहकर यहावे को धन्यवाद देते हुए उनकी स्तुति करें। यहावे को शब्बात हो, नए चांद उत्सवों और सम्मेलनों में इनके बारे में दिए गए आदेशों के अनुसार लगातार होम बलि चढ़ाते रहना। इस प्रकार यहावे के भवन की सेवा के लिए उनकी जवाबदारी थी। मिलन वाले तंबू, पवित्र स्थान और उनके संबंधी अहरोन के पुत्रों की अगुवाई। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 24। पुरोहितों के दलों में विभाजन। अहरोन वंशजों के समूह ये थे। अहरोन के पुत्र थे नादाब, अबीहू, एलियाजर और इथामार। मगर नादाब और अबीहू की मृत्यु उनके पिता के देखते देखते हो गई थी। उनके कोई संतान भी ना थी। फलस्वरूप एलियाजर और इथामार ने पुरोहितिक कार्यभार अपने ऊपर ले लिया। एलियाजर वंशज, सादोक और इथामार वंशज अहीमेलेक के साथ मिलकर दाविद ने सेवा के लिए उनके पदों के अनुसार उनके समूहों को बांट दिया। इसलिए कि एलियाजर वंशजों में इथामार वंशजों से संख्या में ज्यादा मुख्य पाए गए। उनका बंटवारा इस प्रकार किया गया, एलियाजर वंशजों में 16 और इथामार वंशजों में 8 मुख्य पाए गए। ये दोनों ही उनके घराने के अनुसार थे। पासा फेंकने की प्रथा के द्वारा इन सभी का बंटवारा किया गया था, बिना किसी भेदभाव के सभी का, क्योंकि वे मंदिर के, हां परमेश्वर के लिए चुने गए अधिकारी थे। ये दोनों ही एलियाजर और इथामार वंशज थे। लेवियों में से नेथानेल के पुत्र शेमाया ने राजा, शासकों, पुरोहित सादोक, अबियाथर के पुत्र अहीमेलेक और पुरोहितों के घराने और लेवियों के सामने इन्हें लिख लिया। एक घराना एलियाजर के लिए और एक घराना इथामार के लिए लिखा गया। इस प्रक्रिया से पहला पासा यहोयारीब के लिए, दूसरा येदाहिया के लिए, तीसरा हारीम के लिए, चौथा सेयोरीम के लिए, पांचवा मालखिया के लिए, छठा मियामीन के लिए, सातवा हक्कोज के लिए, आठवा अभिया के लिए, नवा येशुआ के लिए, दसवा शेखानिया के लिए, ग्यारहवा एलियाशिब के लिए, बारहवा याकीम के लिए, तेरहवा हुफ्फा के लिए, चौदहवा येशेबियाब के लिए, पंद्रहवा बिलगा के लिए, सोलहवा इमर के लिए, सत्रहवा हेजीर के लिए, अठारहवा हापीजीज के लिए, उन्नीसवा पेथाइया के लिए, बीसवा यहेजकेल के लिए, इक्कीसवा याकीन के लिए, बाईसवा गामूल के लिए, तेईसवा देलाहिया के लिए और चौबीसवा माझिया के लिए निकला। जब ये अपने पूर्वज अहरोन द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार यहावे के भवन में आए, उन्हें सेवा के लिए यही पद सौंपे गए थे, ठीक जैसा आदेश उन्हें यहावे इज़राइल के परमेश्वर ने दिया था। लेवियों के मंडल। इनके अलावा लेवी के अन्य वंशजों का लेखा इस प्रकार है। अमराम के पुत्रों में से शेबुएल, शेबुएल के पुत्रों में से यहदेया, रेहाबिया के पुत्रों में से इशिया जो जेठा भी था, इजहारियों के वंशजों में से शेलोमोत, शेलोमोत के वंशजों में से याहात, हेब्रोन के पुत्र थे येरिया जो जेठा भी था, अमरिया छोटा था, यहाजियल तीसरा और येकामियम चौथा, उज्जियल के पुत्रों में से मीखा, मीखा के पुत्रों में से शामीर, मीखा का भाई था इशिया, इशिया के पुत्रों में से जकरिया, मेरारी के पुत्र महाली और मूशी, यहात्सिया का पुत्र बेनो, मेरारी के पुत्र बेनो, शोहाम, जक्कूर और इब्री जो यहात्सिया से थे, महाली से एलियाजर जिसके कोई संतान ना हुई, कीश से कीश के पुत्र थे येरामील, मूशी के पुत्र महाली एदर और येरीमोत। ये सभी लेवियों के वंशज थे, जैसा उनके घराने द्वारा स्पष्ट है। ठीक अपने संबंधियों अहरोन वंशजों के समान उन्होंने भी राजा दाविद, सादोक, अहीमेलेक, लेवियों और पुरोहितों के घरानों के प्रधानों के सामने अपने पासे फेंके। ये सभी घरानों के प्रधान भी थे और उनके छोटे भाइयों के कुलों के भी। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 25। संगीतकारों के वर्ग। दाविद और सेनापतियों ने मिलकर आसफ, हेमान और यदुथून के पुत्रों को अलग कर दिया कि जब वे नेबेल और किन्नोर नामक वाद्य यंत्र और झांझ बजाए, वे भविष्यवाणी किया करें। जिन्हें इस सेवा की जवाबदारी सौंपी गई थी उनकी सूची इस प्रकार है। आसफ के पुत्रों में से जक्कूर, योसेफ, नेथनिया और आशरेला। आसफ के पुत्र खुद आसफ की अगुवाई में सेवा करते थे। आसफ राजा के आदेश पर भविष्यवाणी करते थे। यदुथून वंशज। यदुथून के वंशज थे गेदालिया, जेरी, येशाइया, शीमेई, हशाबिया और मतीथिया। ये छह अपने पिता यदुथून के साथ किन्नौर वाद्यंत्र के संगीत में यहावे की स्तुति करते, उनके प्रति धन्यवाद प्रकट करते और भविष्यवाणी करते थे। हेमान वंशज। हेमान के पुत्र थे बुकिया, मतनिया, उज्जेल, शूबेल और येरीमोत, हनिया, हनानी, एलियाथा, गिद्धालती और रोमामती एत्सर, योश बेकाशा, मल्लोथी, होथीर, महाजियोत। ये सभी राजा के दर्शी हेमान के पुत्र थे। इनकी जवाबदारी थी परमेश्वर के आदेश के अनुसार उनकी स्तुति करते रहना, क्योंकि परमेश्वर ने हेमान को 14 पुत्र और 3 पुत्रियां दी थी। ये सभी यहावे के भवन में उनके पिता की ही अगुवाई में परमेश्वर के भवन की आराधना में झांझों, नेबेलों और किन्नोरों के संगीत पर गाने के लिए चुने गए थे। आसफ, यदुथून और हेमान राजा के सामने उनकी अगुवाई में काम करते थे। सभी कुशल संगीतकारों और यहावे के लिए गाने के लिए निपुण गायकों की उनके संबंधियों के साथ कुल संख्या 288 थी। इन सभी ने अपनी जिम्मेदारियों का जिम्मा लेने के उद्देश्य से पासे फेंके। सभी ने, चाहे खास हो या सामान्य, शिक्षक हो या विद्यार्थी। पहला संकेत आसफ से योसेफ के लिए था, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। दूसरा गेदालिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। तीसरे में जक्कूर, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। चौथे में इजरी, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। पांचवे में नेथनिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। छठवे में बुकिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। सातवें में येशारेला, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। आठवें में येशाइया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। नवे में मतनिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। दसवें में शीमेई, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। ग्यारहवें में अजरेल, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। बारहवें में हशाबिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। तेरहवें में शेबुएल, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। चौदहवें में मतीथिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। पंद्रहवें में येरेमोत, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। सोलहवें में हनानिया, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। सत्रहवें में योश बेकाशा, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। अठारहवें में हनानी, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। उन्नीसवें में मल्लोथी, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। बीसवें में एलियाथा, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। इक्कीसवें में होथीर, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। बाईसवें में गिधालती, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। तेईसवें में महाजियोत, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। चौबीसवें में रोमामती एत्सेर, उसके पुत्र और संबंधी कुल 12 व्यक्ति। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 26। द्वारपालों के दल। द्वारपालों के लिए विभाजन इस प्रकार किया गया। कोहात के वंश से आसफ के परिवार में से कोरे का पुत्र मेशेलेमिया, मेशेलेमिया के पुत्र जेठा पुत्र जकरिया, दूसरा पुत्र येदियाएल, तीसरा जेबादिया, चौथा याथनियेल, पांचवा एलाम, छठवा येहोहानन और सातवा एलीहोएनाई। ओबेद एदोम के पुत्र जेठा पुत्र शेमाया, दूसरा योजाबाद, तीसरा योहा, चौथा साकार, पांचवा नेथानेल, छठवा अमियेल, सातवा इसाखार और आठवा पेयुल्ले थाई। सत्य तो यह है कि ओबेद एदोम पर परमेश्वर की विशेष कृपा दृष्टि थी। उसके पुत्र शेमाया के भी पुत्र हुए जो अपने अपने परिवारों के प्रधान थे, क्योंकि उनमें अद्भुत प्रतिभा थी। शेमाया के पुत्र ओथनी, रेफाएल और एल्जाबाद, उसके संबंधी एलीहू और सेमाखिया भी अद्भुत क्षमता के व्यक्ति थे। ये सभी ओबेद एदोम के वंशज थे। वे उनके पुत्र और संबंधी सम्मान्य व्यक्ति थे। वे अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में समर्थ थे। वे 62 व्यक्ति थे जो ओबेद एदोम से संबंधित थे। मेशेलेमिया के पुत्र और संबंधी थे 18 वीर योद्धा। मेरारी के एक वंशज होसा के पुत्र थे जेठा शिमरी, जो वास्तव में जेठा नहीं था, किंतु उसके पिता ने उसे यह पद दिया था। दूसरा पुत्र था हिल्किया, तीसरा तेबालिया और चौथा तिसेर वरिया। होसा के पुत्र और संबंधियों की कुल संख्या 13 थी। द्वारपालों के इन दलों को उनके अगुओं की अगुवाई में उन्हीं के संबंधियों के समान यहावे के भवन में सेवा की जवाबदारी सौंपी गई थी। हर एक परिवार ने, चाहे वह छोटा था या बड़ा, पासा फेंकने की प्रक्रिया द्वारा यह मालूम किया कि उन्हें किस द्वार पर सेवा करनी होगी। पासे के द्वारा पूर्वी द्वार की जवाबदारी शेलेमिया को सौंपी गई। तब उसके पुत्र जकरिया लिए पासा फेंका गया। वह बुद्धिमान सलाहकार था। पासा फेंकने से मिले निर्णय के अनुसार उसे उत्तरी द्वार पर रखा गया। ओबेद एदोम के लिए पासे का निर्णय दक्षिण द्वार के लिए पड़ा। उसके पुत्रों को भंडार घर के लिए चुना गया। शुपीम और होसा को पश्चिमी द्वार के लिए चुना गया। इसके अलावा चढ़ाई के मार्ग के शल्लेकेत द्वार के लिए द्वारपालों का काम पहरेदारों के समान था। पूर्व में हर रोज 6 लेवी ठहराए जाते थे, उत्तर में हर रोज 4, दक्षिण में हर रोज 4 और हर एक भंडार घर पर 2-2। पश्चिमी ओसारे के लिए 4 पहरेदार मार्ग की ओर और 2 ओसारे के लिए चुने गए थे। द्वारपालों का यह बंटवारा कोरा वंशजों और मेरारी के पुत्रों के बीच किया गया था। खजांची और दूसरे अधिकारी। अहिया के नेतृत्व में लेवी वंशज और उनके संबंधी परमेश्वर के भवन के खजाने और चढ़ाई गई वस्तुओं के खजाने के अधिकारी थे। लादान वंशज, जो वस्तुते गेरशोन से लादान वंशज थे। गर्शोनी लादान के घराने के प्रधान थे, जिनमें यहीएली भी शामिल थे। यहीएली का पुत्र जेथम और उसका भाई योएल यहावे के भवन के खजाने के अधिकारी थे। अमरामियों, इजहारियों, हेब्रोनियों और उत्सेलियों पर मोशे का पोता गेरशोम का पुत्र शूबेल प्रमुख खजाना अधिकारी था। एलियाजर की ओर से उसके संबंधी रेहाबिया, उसके पुत्र येशाया, उसका पुत्र योराम, उसका पुत्र जिक्री और उसका पुत्र शेलेमोथ थे। शेलेमोथ और उसके संबंधी उन सभी खजानों के अधिकारी थे जिसमें चढ़ाई गई भेंटें इकट्ठा थी, जो राजा दाविद घराने के प्रधान सहस्त्रपतियों, शतपतियों, सैन्य अधिकारियों द्वारा चढ़ाई गई थी। इन्होंने इसमें यहावे के मंदिर के रख रखाव के उद्देश्य से युद्ध में लूटी हुई सामग्री का भाग बचाकर रखा था। शेलेमोथ और उसका परिवार उन सभी वस्तुओं का अधिकारी था जो मंदिर में इस्तेमाल के लिए चढ़ाई जाती थी। इनमें वे भेंट भी शामिल थी जो भविष्यद्वक्ता शमूएल, राजा शाऊल, नेर के पुत्र अबनेर और जेरुया के पुत्र योआब द्वारा चढ़ाई गई थी। इजहारियों के बारे में केनानिया और उसके पुत्रों को मंदिर के बाहर इसराइल के प्रशासकों और न्याय अध्यक्षों के काम का भार सौंपा गया था। हेब्रोनियों के विषय में हशाबिया और उसके 1,700 सामान्य संबंधियों को यर्दन के पश्चिमी ओर बसे इसराइलियों की जवाबदारी सौंपी गई। वे राजा की सेवा में रहते हुए यहावे के लिए काम करते थे। हेब्रोनियों के विषय में यह भी सच है कि वंशावली की लेख के अनुसार येरिया हेब्रोन वंशजों का अगुआ था। दाविद के शासनकाल के 40वें साल में उन्होंने वंशावली के लेखों की जांच की और यह पाया कि गिलाद के याजर नगर में बहुत सम्मान योग्य व्यक्ति बसे हुए हैं। येरिया के 2,700 संबंधी थे जो परिवार के सम्मान योग्य प्रधान थे। राजा दाविद ने इन्हें रियूबेन वंशजों, गाद वंशजों और मनशे के आधे गोत्र पर अधिकारी ठहरा दिया। इनका काम था परमेश्वर और राजा से संबंधित सभी विषयों का ध्यान रखना। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 27। सैन्य के अधिकारी। नीचे दी गई सूची इसराइली परिवारों के प्रधानों और सहस्त्रपति और शतपति सेनापतियों की और उनकी भी है जो राजा की सेवा उनसे संबंधित सभी विषयों में करते रहते थे। हर एक टुकड़ी से यह उम्मीद की जाती थी कि साल में 1 महीने सेवा करें। हर एक टुकड़ी की संख्या थी 24,000। जाबदीएल का पुत्र यासोबम पहली टुकड़ी का अधिकारी था जिसे पहले महीने में सेवा की जवाबदारी सौंपी गई थी। उसकी टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। वह पेरेज का वंशज था। वह पहले महीने में सभी सैन्य अधिकारियों का प्रमुख था। अहोही दोदाई दूसरे महीने के लिए ठहराई गई टुकड़ी का अधिकारी था। मिखलोत उनका प्रमुख अधिकारी था। इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। तीसरे महीने के लिए ठहराई गई टुकड़ी का अधिकारी था यहोयादा का पुत्र बेनाइया। इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। यह वही बेनाइया था जो 30 वीरों में से एक वीर सैनिक था। उसके बाद उसका पुत्र अमीजाबाद इस समूह के सेनापति के रूप में चुना गया। चौथे महीने योआब का भाई आसाहेल, उसके बाद उसका पुत्र जेबादिया सेनापति बना। इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। पांचवें महीने में इजहार का वंशज समहूत, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। छठे महीने तकोआवासी इकेश का पुत्र ईरा, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। सातवें महीने पेलोन नगर के इफ्राइमवासी हेलेस, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। आठवें महीने हुशाथी नगर का सिबेकाई, वह यहूदा गोत्र के जेरा वंश का सदस्य था, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। नवे महीने बिन्यामीन गोत्र के क्षेत्र के अनाथोत नगर से अबियेजर, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। दसवें नगर नेतोफा नगर से महाराई, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। ग्यारहवें महीने एफ्राइम गोत्र के प्रदेश के पिराथोन नगर का बेनाइया, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। बारहवें महीने नेतोफा से हेल्दाई जो ओथनियल का वंशज था, इस टुकड़ी में 24,000 सैनिक थे। कुलों का प्रबंधन। इसराइल के गोत्रों का प्रबंधन रियूबेन, जिक्री का पुत्र एलियाजर, शिमोन, माखा का पुत्र शेपाथिया, लेवी, कैमुएल का पुत्र हशाबिया, अहरोन, जादोक, यहूदा, राजा दाविद का एक भाई एलीहू, इसखार, मिखाइल का पुत्र उमरी, जेबुलून, ओबद्या का पुत्र इश्माइया, नफ्ताली, अजरियल का पुत्र येरीमोथ, एफ्राइम, अजरिया का पुत्र होशिया, पश्चिमी मनशे, पेदाइया का पुत्र योएल, पूर्वी गिलाद मनशे, जकरिया का पुत्र इद्धो, बिन्यामीन, अबनेर का पुत्र यासियेल, दान, येरोहाम का पुत्र अजरेल। ये थे इसराइल के गोत्रों के प्रमुख। दाविद ने यहावे की उस प्रतिज्ञा को याद करके जिसमें उन्होंने कहा था कि वह इसराइल को आकाश के तारों के समान अनगिनत बना देंगे, गिनती में उन्हें शामिल नहीं किया था, जिनकी उम्र 20 साल या इससे कम थी। जेरुया के पुत्र योआब ने उन्हें शामिल करना शुरू किया ही था, मगर इसे पूरा नहीं किया। फिर भी इसके लिए इसराइल परमेश्वर के क्रोध का शिकार बन गया। वास्तविक गिनती राजा दाविद के इतिहास की पुस्तक में शामिल ना की जा सकी। विभिन्न पर्यवेक्षक। आदियेल का पुत्र अजमावेत राजा के राज भंडारों का अधीक्षक था। उज्जिया का पुत्र योनातन छोटे नगरों के भंडारों, गांवों, खेतों और मीनारों का अधीक्षक था। केलूब का पुत्र एजरी कृषि मजदूरों का अधीक्षक था। रामा का शिमेई अंगूरों के खेतों का अधीक्षक था। शेफामवासी जब्दी अंगूरों के खेतों से आने वाली दाख मधु की देखभाल और भंडारण करने का अधीक्षक था। गेदेर का बाल हनन पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश में जैतून और देवदार वृक्षों का अधीक्षक था। योवाश जैतून के तेल के भंडारण का अधीक्षक था। शारोन का शित्राई शारोन क्षेत्र में पशुओं का अधीक्षक था। अदलाई का पुत्र शाफात घाटियों में पशुओं का अधीक्षक था। इस्माइली व्यक्ति ओबील ऊँटों का अधीक्षक था। मेरोनोत का यहदिया गधों का अधीक्षक था। अग्रिया नगरवासी याजीज भेड़ बकरियों का अधीक्षक था। यही सब थे राजा दाविद के धन संपत्ति के अधिकारी। दाविद के चाचा योनातन उनके सलाहकार थे। उनमें सूझबूझ थी। वह लेखक भी थे। उनके अलावा हकमोनी का पुत्र यहियेल राजपुत्रों का शिक्षक था। अहितोफेल राजा का सलाहकार था। अर्की हुशाई राजा का सलाहकार मित्र था। बेनाहिया का पुत्र यहोयादा और अबियाथर अहितोफेल के बाद उनकी जगह पर सलाहकार हुए। योआब राजा की सेना का सेनापति था। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 28। मंदिर के संबंध में दाविद का संबोधन। दाविद ने इसराइल के सभी अधिकारियों गोत्रों के प्रशासकों और राजकीय सेवा में लगी सेना की टुकड़ियों के हाकिमों और 1,000 सैनिकों के सेनापतियों 100 सैनिकों के सेनापतियों खजाने और राजा और उनके पुत्रों के पशुओं के अगुओं को राजमहल के अधिकारियों वीर योद्धाओं और बहुत अनुभवी योद्धाओं के साथ यरूशलेम में आमंत्रित किया। राजा दाविद ने इन सबके सामने खड़े होकर उन्हें संबोधित कर कहा, मेरे भाइयों और मेरी प्रजा मेरी बातें ध्यान से सुनो। यह मेरी इच्छा थी कि मैं यहावे की वाचा का संदूक और हमारे परमेश्वर के पैरों की चौकी के लिए एक स्थिर घर को बनाऊं। इसी उद्देश्य से मैंने भवन बनाने की तैयारी कर ली, मगर परमेश्वर ने मुझसे कहा, मेरे आदर में भवन को तुम नहीं बनाओगे, क्योंकि तुम एक योद्धा हो, तुमने बहुत लहू बहाया है। फिर भी यहावे इसराइल के परमेश्वर ने मेरे पिता के पूरे परिवार में से मुझे इसराइल के सदाकाल के राजा के पद पर बैठाना सही समझा। यह इसलिए कि उन्होंने ही यहूदा गोत्र को अगुआ बनाने के लिए चुना और यहूदा गोत्र में से मेरे पिता के परिवार को और मेरे पिता के पुत्रों में से पूरे इसराइल का राजा मुझे बनाने में उनकी खुशी थी। यहावे ने मुझे बहुत पुत्र दिए हैं। उन्होंने मेरे पुत्र शलोमोन को इसराइल के ऊपर यहावे के साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने के लिए चुना है। यहावे ने मुझसे कहा, तुम्हारा पुत्र शलोमोन ही वह है जो मेरे भवन और मेरे आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने यही सही समझा है कि वह मेरे लिए पुत्र हो और मैं उसका पिता हो जाऊंगा। अगर वह हमेशा मेरे आदेशों और नियमों का पालन करता रहे जैसा कि वह इस समय कर ही रहा है, मैं उसके राज्य को हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा। इसलिए अब सारे इसराइल के सामने जो यहावे की सभा है और हमारे परमेश्वर के सामने यहावे तुम्हारे परमेश्वर के सभी आदेशों का यत्न से पालन करो कि इस समृद्ध भूमि पर तुम अधिकारी बने रहो और तुम अपने बाद हमेशा के लिए अपने बच्चों को सौंपते जाओ और तुम मेरे शलोमोन अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करो सच्चे हृदय और तैयार मन से उनकी सेवा करो, क्योंकि यहावे हर एक हृदय को जांचते रहते हैं और मन के हर एक विचारों को समझते हैं। यदि तुम उन्हें खोजोगे तो उन्हें पाओगे, अगर तुम उनको छोड़ दोगे वह हमेशा के लिए तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। अब सावधान हो जाओ, क्योंकि यहावे ने तुम्हें मंदिर के भवन को बनाने के लिए चुना है। दृढ़ निश्चय के साथ इस काम को पूरा करो। इसके बाद दाविद ने शलोमोन को मंदिर के भीतरी हिस्सों, इसके भवनों, इसके भंडार घरों, इसके ऊपरी कमरों, इसके भीतरी कमरों और करुणासन के कमरे का नमूना सौंप दिया। इसके अलावा वह सारा नमूना भी जो उनके मन में यहावे के मन के आंगन, आसपास के कमरों, परमेश्वर के भवन के भंडार घरों और भेंट की हुई वस्तुओं के भंडार घरों के संबंध में था, साथ ही वह नमूना भी जो पुरोहितों और लेवियों के समूहों और यहावे के भवन के सभी सेवा के कामों से संबंधित थी और यहावे के भवन में इस्तेमाल होने वाली सेवा से संबंधित पात्रों के बारे में। दाविद ने हर एक प्रकार की आराधना में इस्तेमाल होने वाले सारे सोने के बर्तनों के लिए सोने की मात्रा तय की। इसी प्रकार हर एक तरह की आराधना में इस्तेमाल होने वाले सभी चांदी के बर्तनों की भी मात्रा तय की। इसके बाद दाविद ने यह भी तय किया कि दीप घरों और उनके दीवटों में कितने सोने की जरूरत होगी, इसी प्रकार चांदी के दीप घरों और उनके दीपकों में कितनी चांदी की जरूरत होगी। इनकी यह मात्रा आराधना में हर एक दीपक के इस्तेमाल के आधार पर तय की गई थी। दाविद ने निम्नलिखित वस्तुओं में इस्तेमाल किए जाने वाले सोने और चांदी की मात्रा तय की। भेंट की रोटी के मेजों के लिए सोना और चांदी की मेजों के लिए जरूरी चांदी, कांटों, कटोरों और प्यालों के लिए चोखा सोना, सोने की कटोरियों के लिए जरूरी सोना, चांदी की कटोरियों के लिए जरूरी चांदी, तब चोखे सोने से बनाने के लिए ठहराई गई धूप की वेदी के लिए चोखा सोना और रथ के नमूने के लिए सोना और उन करूबों के लिए सोना जो यहावे की वाचा के संदूक को अपने फैले हुए पंखों से ढांपे हुए हैं, सोने की मात्रा तय कर दी। दाविद ने शलोमोन से कहा, यह सब यहावे के निर्देश के अनुसार इस नमूने का हर एक बारीक विवरण के रूप में लिखा है, मुझ पर यहावे का हाथ बना रहा है। दाविद ने शलोमोन से आगे कहा, दृढ़ हो जाओ, हिम्मत बनाए रखो और काम में लग जाओ, ना तो तुम डरना और ना निराश होना, क्योंकि यहावे परमेश्वर जो मेरे परमेश्वर है तुम्हारे साथ हैं। वह ना तो तुम्हें निराश करेंगे ना तुम्हें त्यागेंगे, जब तक यहावे के भवन के बनने का काम पूरा ना हो जाए। यह ध्यान रहे कि परमेश्वर के भवन में सभी आराधनाओं को चलाने के लिए पुरोहितों और लेवियों के समूह है। तुम्हें किसी भी काम के लिए अपनी इच्छा अनुसार अपना कौशल इस्तेमाल करने के लिए कारीगर उपलब्ध हैं। अधिकारी भी सभी लोगों के साथ तुम्हारे आदेश को पूरा करने के लिए तैयार हैं। इतिहास की पहली पुस्तक अध्याय 29। मंदिर के लिए भेंटे। सारी सभा को राजा दाविद ने कहा, मेरा पुत्र शलोमोन, जो सिर्फ परमेश्वर द्वारा ही चुना गया है, इस समय कम उम्र और कम अनुभव का है, जबकि यह एक बड़ा काम है, क्योंकि यह मंदिर किसी इंसान का नहीं, यहावे परमेश्वर के आदर में बनाया जा रहा है। मैं अपनी शक्ति भर कोशिश कर मेरे परमेश्वर यहावे के भवन के लिए सोने की वस्तुओं के लिए सोना, चांदी की वस्तुओं के लिए चांदी, कांसे की वस्तुओं के लिए कांसा, लोहे की वस्तुओं के लिए लोहा और लकड़ी की वस्तुओं के लिए लकड़ी इकट्ठा कर लिया है। मैंने इनके अलावा शेष मणि पत्थर, जड़े जाने के लिए पत्थर, सुरमा के पत्थर और तरह तरह के रंगों के पत्थर और सभी प्रकार के कीमती पत्थर और सिलखड़ी के पत्थर भी बड़ी मात्रा में इकट्ठा कर लिए हैं। इन सब के अलावा मेरे परमेश्वर के भवन में मेरा मन लगा रहने के कारण अपने खुद के खजाने में से सोने और चांदी मैं मेरे परमेश्वर के भवन के लिए दे रहा हूँ। उन सब वस्तुओं के अलावा जो मैंने पहले ही पवित्र मंदिर के लिए इकट्ठा कर रखी है, यानी ओफीर के सोने में से 100,000 किलो सोना और 250,000 किलो ताई हुई चांदी जिसे भवन की दीवारों पर मढ़ा जाना था। यह सब सोने से बनने वाली वस्तुओं और चांदी से बनने वाली वस्तुओं के लिए था, जिसका इस्तेमाल तरह तरह के कारीगर करने को थे। आप लोगों में से कौन कौन आज यहावे के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए तैयार हैं? यह सुनकर इसके उत्तर में सभी गोत्रों के प्रधानों ने, इज़राइल के कुलों के शासकों ने, हजारों और सैकड़ों के अधिकारियों ने और राजा का काम करने वाले अगुओं ने अपनी इच्छा से दान दिया। परमेश्वर के भवन से संबंधित कामों के लिए इन सब ने 5,000 तालांत सोना और 10,000 सोने के सिक्के, 3,500,000 किलो चांदी, 6,000,000 किलो कांसा और 35,000,000 किलो लोहा दान में दे दिया। जिस किसी के पास कीमती पत्थर थे उन्होंने उन्हें यहावे के भवन के भंडार में दे दिया, जो गेरशोन योहियल की निगरानी में रखे गए थे। अपनी इच्छा से यह सब दे देने पर जनता में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उन्होंने यह भेंट यहावे को खरे मन से भेंट चढ़ाई थी। राजा दाविद के सामने भी यह बड़े आनंद का विषय था। जमा हुई सभा के साथ दाविद की प्रार्थना। यह सब होने के बाद दाविद ने पूरी सभा के सामने यहावे की स्तुति की। दाविद ने कहा, यहावे इज़राइल के परमेश्वर, आप आदि से अंत तक स्तुति के योग्य हैं। यहावे महिमा, सामर्थ, प्रताप, विजय और वैभव, यानी सभी कुछ जो स्वर्ग और पृथ्वी में है, आपका ही है। यहावे प्रभुता आपकी ही है। आपने अपने आप को सबके ऊपर मुख्य और महान किया हुआ है। धन और सम्मान आपसे ही मिलते हैं। आपकी प्रभुता सब जगह है। अधिकार और सामर्थ्य आपके हाथ में है। अपने ही अधिकार में आप मनुष्यों को ऊंचा करते और उन्हें बलवान बना देते हैं। इसलिए हमारे परमेश्वर, हम आपके आभारी हैं और हम आपकी महिमा के वैभव को सराहते हैं। कौन हूं मैं और क्या है मेरी प्रजा की हम ऐसे अपनी इच्छा से भेंट चढ़ा सके, क्योंकि सभी कुछ आपसे ही मिलता है। हमने जो कुछ दिया है वह हमको आपने आपके ही हाथों से दिया हुआ है। हम तो आपके सामने अपने पुरखों के समान सिर्फ यात्री और परदेशी ही हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान होते हैं, निराशा से भरे। यहावे हमारे परमेश्वर, आपके आदर में भवन बनाने के लिए हमने जो कुछ अपनी इच्छा से दिया है आपका ही दिया हुआ है, इसलिए यह आपका ही है। मेरे परमेश्वर, इसलिए कि मुझे यह मालूम है कि आप हृदय को परखते और सीधाई में आपकी खुशी है, मैंने अपने हृदय की सच्चाई में अपनी इच्छा से यह सब दे दिया है। यहां मैंने यह भी बड़े आनंद से आपकी प्रजा में देखा है, जो यहां आए हैं वे आपको अपनी इच्छा से दे रहे हैं। यहावे हमारे पुरखे अब्राहम, यित्साहक और इज़राइल के परमेश्वर, अपनी प्रजा के हृदय की इच्छा में यह हमेशा बनाए रखिए और उनके हृदय अपनी ही ओर लगाए रखिए। मेरे पुत्र शलोमोन को एक ऐसा खरा मन दे कि वह आपके आदेशों, नियमों और विधियों का पालन करता रहे, और वह इस मंदिर को बनाने का काम पूरा करे जिसके लिए मैंने यह इंतजाम किया है। इसके बाद दाविद पूरी सभा की ओर फिरे और उन्हें इन शब्दों में कहा, यहावे अपने परमेश्वर की स्तुति करो। पूरी सभा ने यहावे की, अपने पुरखों के परमेश्वर की स्तुति की। उन्होंने झुककर यहावे और राजा को दंडवत किया। राजा के रूप में शलोमोन का स्वीकार व अभिषेक। दूसरे दिन उन्होंने यहावे के लिए बलि चढ़ाई और यहावे के लिए होमबलि भेंट की, 1,000 बछड़े, 1,000 मेढ़े और 1,000 मेमने, और इनके अलावा उन्होंने पूरे इज़राइल के लिए भरपूरी से पे बलि और बलियां चढ़ाई। उस दिन उन्होंने बड़ी ही खुशी में यहावे के सामने खाया और पिया। उन्होंने एक बार फिर दाविद के पुत्र शलोमोन का राजाभिषेक किया। उन्होंने यहावे के सामने शलोमोन को शासन और सादोक को पुरोहित के काम के लिए अभिषेक किया। यहावे द्वारा ठहराए गए सिंहासन पर राजा होकर शलोमोन अपने पिता दाविद की जगह पर बैठे। वह समृद्ध होते चले गए और सारा इसराइल उनके आदेशों को मानता था। सभी अगुओं ने, वीर योद्धाओं ने और राजा दाविद के पुत्रों ने राजा शलोमोन से उनकी अधीनता की शपथ खाई। यहावे ने शलोमोन को सारे इसराइल की दृष्टि में बहुत ही प्रतिष्ठित बना दिया और उन्हें इस तरह का राजकीय ऐश्वर्य दिया जैसा इसके पहले इसराइल में और किसी राजा को ना मिली थी। दाविद की मृत्यु। येशे के पुत्र दाविद ने सारे इसराइल पर शासन किया। इसराइल पर उनका शासन काल 40 वर्ष का था, 7 साल हेब्रोन में और 33 साल यरूशलेम में। बहुत बूढ़ा होने की अवस्था तक पहुंचकर जीवन के लिए ठहराए गए दिन पूरे कर समृद्धि और वैभव की स्थिति में दाविद की मृत्यु हुई। उनकी जगह पर उनका पुत्र शलोमोन राजा हुआ। शुरू से लेकर अंत तक राजा दाविद द्वारा किए गए कामों का वर्णन दर्शी शैमुएल, भविष्यद्वक्ता नाथान और दर्शी गाद द्वारा लिखी गई इतिहास की पुस्तक में किया गया है। इन पुस्तकों में उनके शासन, उनकी शक्ति, उन पर और इसराइल पर पड़ी परिस्थितियों और दुनिया के दूसरे देशों पर आई परिस्थितियों का वर्णन है।